भारत के विभिन्न भागों में देहाती जीवन की एक विशेषता है प्रभुता संपन्न भूस्वामी जातियों की उपस्थिति। प्रभुता संपन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि उस जाति का उपलब्ध स्थानीय कृषि योग्य भूमि में से बड़े अंश पर स्वामित्व हो, उसकी सदस्य संख्या यथेष्ट हो और स्थानीय सोपान में उसे उच्च स्थान प्राप्त हो। जब किसी जाति में प्रभुता के ये सारे गुण मौजूद हो तो कहा जा सकता है कि उसे असंदिग्ध प्रभुता प्राप्त है। कभी कभी किसी गांव में एक ऐसे अधिक जाति की प्रभुता होती है और कालांतर में प्रभुता एक जाति से दूसरी के पास पहुंच सकती है। यह कभी कभी अंग्रेज पूर्व युग में भी होता था और 20वीं शताब्दी में भी देहाती सामाजिक परिवर्तनों का यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पिछले लगभग 80 वर्ष में प्रभुता और असर डालने वाले ये नए तत्व प्रकट हुए हैं। पश्चिमी शिक्षा प्रशासन में नौकरियां और आमदनी के शहरी साधन सब गांव में विशेष जाति समूहों की प्रतिष्ठा और सत्ता बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से बालिग मताधिकार और पंचायती राज गांव तहसील और जिला स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन के प्रारंभ से नीच जातियों विशेष कर हरिजनों को जिनके लिए गांव से लगाकर संघीय संसद तक सभी निर्वाचित संस्थाओं में स्थान सुरक्षित है आत्मसम्मान और शक्ति का नया भाव प्राप्त हुआ है। इन परिवर्तनों के दीर्घकालीन प्रभाव संभवतः और कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर उन गांवों में जहां हरिजन इतनी संख्या में मौजूद हैं कि स्थानीय शक्ति का पलड़ा किसी न किसी दिशा में झुका सके। पारंपरिक व्यवस्था में किसी ऊंची जाति के थोड़े से लोगों का यदि कृषि योग्य भूमि के बड़े अंश पर स्वामित्व हो और उन्हें उच्च कर्मकांडीय स्थान भी प्राप्त हो तो वे सारे गांव पर अधिकार चला सकते हैं। किंतु अब ग्रामीण भारत के बहुत से भागों में सत्ता संख्या की दृष्टि से भूस्वामी किसान जातियों के हाथों में पहुंच गई है और कुछ ऐसे गांवों को छोड़कर जहां हरिजन बहुसंख्यक हैं और अपने लिए उपलब्ध शिक्षा के तथा अन्य अवसरों का लाभ भी उठा रहे हैं, अभी वह कुछ समय तक उन्हीं के पास रहेगी। प्रभु जाति में स्थानीय गुटबंदी से भी यह खतरा पैदा होता है कि सत्ता देर तक उसके पास बनी रह सके। देहाती भारत में प्रभुता का प्रश्न अब सर्वथा स्थानीय नहीं रहा। एक जाति समूह जिसके केवल एक दो परिवार ही किसी गांव विशेष में रहते हो पर व्यापक अंचल में जिसकी प्रभुता असंदिग्ध हो उसका स्थानीय महत्व अपने प्रभुता संपन्न रिश्तेदारों के साथ संबंध सूत्रों के कारण फिर भी रहेगा। इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गांव के दूसरे लोगों को भी इन संबंध सूत्रों की चेतना होगी जिसके इसके विपरीत जिस जाति को केवल एक गांव में प्रभुता प्राप्त है उसे अनुभव होगा कि उसके लिए उस जाति का ध्यान रखना आवश्यक है जिसे प्रादेशिक प्रभुता प्राप्त है। पिछले 50 वर्षों में संचार साधनों में भारी सुधार के कारण भी सर्वथा स्थानीय जीवन शैलियों की प्रतिष्ठा घटी है। देहाती नेताओं में कम से कम उनके बेटों में प्रतिष्ठित शहरी जीवन पद्धतियों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है और इस प्रक्रिया के दीर्घकालीन प्रभाव स्वरूप सांस्कृतिक अनेक रूपता में कमी और एक रूपता में वृद्धि हुई है। प्रभुता स्थापित होने में भूस्वामित्व बड़ा निर्णायक तत्व है। आमतौर पर भारत के देहातों में भूमि के स्वामित्व का रूप ऐसा है कि कृषि योग्य भूमि पर अधिकांश भाग अपेक्षाकृत थोड़े से बड़े बड़े भूस्वामियों के हाथों में केंद्रित है, जबकि बहुसंख्यक लोगों के पास भूमि या तो बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं। ये अल्पसंख्यक बड़े भूस्वामी गांव की बाकी आबादी के ऊपर बहुत ज्यादा हुकूमत चलाते हैं और तेजी से आबादी बढ़ने के कारण हालात और भी खराब होती जाती है। बड़े भूस्वामी अधिकतर गरीब देहातियों के संरक्षक होते हैं। दस्तकार और सेवक जातियों का हर परिवार कुछ एक भूस्वामी परिवारों को सामान और सेवाएं देता रहता है। परंपरा से ये संबंध स्थिर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। इसके बदले में उन्हें फसल के समय अनाज और भूसा मिलता है। जमींदार और काश्तकार अथवा खेतिहर मजदूर के बीच संबंध भी टिकाऊ प्रकार के होते हैं। यद्यपि पिछले वर्षों में वे कमजोर हुए हैं, काश्तकार मजदूर दस्तकार और सेवक जातियों के लोग भूस्वामी संरक्षक के आसामी कहलाते हैं और इस नाते उनके कुछ कर्तव्य निश्चित होते हैं। भूस्वामित्व के स्वरूप में ऐसी असमानताएं शायद अन्य विकासशील देशों में भी पाई जाती हैं, पर भारतीय स्थिति में अनोखी बात यह है कि भूस्वामी काश्तकार भूमिहीन मजदूरों दस्तकार एवं सेवा करने वालों के जाति समूह स्थायी और पुश्तैनी होते हैं। भूस्वामी साधारणतः उच्च जातियों के होते हैं, जबकि 35% हरिजन भूमिहीन मजदूर होते हैं और भूमि के अधिकांश स्वामियों की जोत इतनी छोटी होती है कि उनकी हालत खेतीयर मजदूर से कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती। भूस्वामित्व से न केवल शक्ति बल्कि प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। यहाँ तक कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने वालों लोगों में भूमि में रुपया लगाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूस्वामित्व पद ऊंचा करने का अनिवार्य उपाय सदा न भी होता हो, पर उससे ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता में निश्चय ही आसानी होती है। जाति सोपान में भूस्वामित्व और ऊंचे पद के बीच संगति पर बहुत लोगों का ध्यान गया है, पर यह याद रखना जरूरी है कि वह संगति सामान्य प्रकार की होती है और प्रत्येक क्षेत्र में उसके अपवाद पाए जाते हैं। भूस्वामी जातियों को प्राप्त इस अधिकार और प्रतिष्ठा का प्रभाव उनके सब जातियों के साथ उनके साथ भी जो कर्मकांडी दृष्टि से उनसे उच्चतर हैं संबंधों पर पड़ता है। जैसे पंजाब के कुछ भागों में जाट भूस्वामी ब्राह्मणों को अपना सेवक समझते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के माधवपुर गांव में किसी समय प्रभुता संपन्न ठाकुर अपने गुरुओं को और पुरोहितों के अतिरिक्त अन्य किसी ब्राह्मण के हाथ का बना भोजन नहीं खाते थे। मैसूर राज्य के रामपुर गांव के लोग राम मंदिर के ब्राह्मण पुजारी की हंसी उड़ाते थे जब मंदिर के किसी उत्सव के अवसर पर उसने भक्तों को प्रसाद बांटना चाहा तो वहां एकत्र किसान नौजवान उसे चिढ़ाने के लिए बार बार मांगने लगे और जब वह न दे सका तो उसकी धोती खींचने लगे। पुजारी ने मुखिया से शिकायत की तो उसने यह प्रबंध किया कि प्रसाद बांटने के समय किसी प्रभावी किसान खानदान का कोई प्रतिनिधि मंदिर में मौजूद रहे। एक बार एक किसान लड़का मेरे और पुजारी के साथ जा रहा था तो उसने पुजारी की खेती की तरफ जरूरत से ज्यादा ध्यान देने और मंदिर के काम के प्रति उदासीन रहने की आलोचना की और पुजारी बात बदलने के दो एक असफल प्रयत्न करता ही रह गया। किंतु लौकिक कसौटियों महत्वपूर्ण होने पर भी कर्मकांडी श्रेष्ठता का अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अलग ही शक्ति है। बीडल मैन ने ठीक ही कहा है, असंगति की जोखिम उठाकर भी मैं इस बार इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ कर्मकांडी पद आर्थिक निर्धारकों पर निर्भर नहीं जान पड़ता। सेनपुर और रामपुर में ब्राह्मण सत्ता संपन्न अथवा आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ तर न थे बल्कि जाटों और ठाकुरों के अधीन थे, पर शायद गांव के लोग सर्वसहमति से यह मानते थे कि कर्मकांड की दृष्टि से ये ब्राह्मण ही सर्वोच्च हैं। गांव को इसमें कोई विरोधाभास न लगता था कि ब्राह्मण अन्य जातियों से आर्थिक दृष्टि से प्रबल जातियों से भी कुछ इस प्रकार का बना हुआ भोजन और कभी कभी अन्य सामाजिक उपहार अस्वीकार कर सकते हैं। वे मानते थे कि कर्मकांड की दृष्टि से ये जातियां ब्राह्मणों की तुलना में अपवित्र हैं। बीजलमैन ने जिस असंगति पर जोर दिया है और जिसे लोग स्वयं भी जानते हैं वह जातियों के पद निर्धारण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें कभी कभी कर्मकांडी और लौकिक पद के बीच विच्छेद दिखाई पड़ता है। केवल लौकिक कसौटी पर ही किसी ब्राह्मण का स्थान भले ही नीचा हो पर वह फिर भी ब्राह्मण है और इस कारण कर्मकांड और पवित्रता संबंधी संदर्भों के सम्मान का अधिकारी है। लखपति गुजराती बनिया किस कभी उस रसोई में पैर नहीं रखता जहां ब्राह्मण रसोईया काम करता हो, क्योंकि ऐसा करने से ब्राह्मण और रसोई के बर्तन पवित्र हो जाते हैं। केवल संदर्भ गत भिन्नता ही नहीं, बल्कि उस धर्म के कारण भी ब्राह्मण विशिष्ट माने जाते हैं जिससे उनका इतना घनिष्ठ संबंध है। इस तथ्य से हिंदू धर्म की आधुनिक व्याख्या में सहायता मिली है। स्थानीय प्रभु जाति का संस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्शों के लिए माध्यम होना सांस्कृतिक संकरण की प्रक्रिया में उस जाति के महत्व का सूचक है। इस भांति यदि स्थानीय प्रभु जाति ब्राह्मण या लिंगायत हो तो उसकी निवृत्ति संस्कृतिकरण के ब्राह्मण आदर्श के संकरण की होगी, और यदि वह राजपूत अथवा बनिया हो तो क्षत्रिय या वैश्य आदर्श का संचरण होगा। अवश्य ही प्रत्येक स्थानीय प्रभु जाति की ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य आदर्शों की अपनी अपनी अलग धारणा होती है। जाति व्यवस्था में दो सुस्पष्ट प्रवृत्तियां अंतर्निहित हैं। पहली है किसी स्थानीय समाज में नैतिक और धार्मिक प्रतिमानों सहित बहुत सी संस्कृतियों के अस्तित्व की स्वीकृति। इस स्वीकृति के साथ यह भावना भी रहती है कि कुछ संस्थाएं विचार विश्वास और अभ्यास तो अपने समूह के लिए उपयुक्त होते हैं और कुछ नहीं होते। किसान को अपनी खेती पर बड़ा गर्व होता है और वह सदा उसके महत्व को उसकी कठिनाइयों के बारे में तथा उसके लिए आवश्यक कौशल और धीरज की बात करता है। कारीगर या सेवक जाति के सदस्य का भी अपने पुश्तैनी धंधे के बारे में यही रवैया है। कभी कभी कुछ व्यक्ति दूसरी जातियों के पुश्तैनी धंधों की बुराई करते भी पाए जाते हैं। जाति प्रथा में अंतर्निहित दूसरी प्रवृत्ति है उच्च जातियों के रंग ढंग का अनुकरण। अनुकरण किसी जाति विशेष का नहीं होता, सर्वोच्च जाति का भी नहीं। पुकाक का यह कथन सारतः सत्य है। अपेक्षतया निचली कोटि की अब्राह्मण जाति ब्राह्मणत्व की किसी धारणा का अनुकरण नहीं करती अथवा पुस्तकों के प्रचार के पहले नहीं करती थी, और न लौकिक प्रतिष्ठा की उसकी कोई सामान्य परिकल्पनाएं होती है। उसके आचरण के लिए आदर्श अपने से ऊपर की वे जातियां होती हैं जिनसे उसके सबसे अधिक समीपता हो। सच पूछा जाए तो एक जाति दूसरी जाति के अनुकरण के बजाय किसी जाति के एक स्थानीय अंश का एक अन्य स्थानीय अंश का अनुकरण कहना ज्यादा ठीक होगा। रेखांकन मेरे द्वारा। किंतु फिर भी यह चेतावनी देना आवश्यक है कि स्थानीय ग्राम व्यवस्था को व्यापकतर अखिल भारतीय व्यवस्था की पूर्णतः स्वतंत्र मानना ठीक न होगा। आचरण के आदर्श तीर्थ यात्राओं हरिकथाओं और धार्मिक नाटकों जैसे महान परंपराओं के स्रोतों में भी प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पाटीदारों का संस्कृतिकरण बहुत कुछ इन्हीं स्रोतों के कारण और वल्लभाचार्य और स्वामी नारायण संप्रदायों के प्रभाव के कारण है। गांव में प्रभु जाति के बुजुर्ग ही एक बहुत्ववादी संस्कृति और मूल्य व्यवस्था के प्रहरी होते थे। परंपरा से ही वे एक जाति को दूसरी जाति के पुश्तैनी धंधों को अपनाने से रोकते थे, जिससे एकाधिकार में दरार पड़ने से उसके हितों पर आंच न आए। केवल खेती और कुछ वस्तुओं का व्यापार ही इसमें अपवाद थे। प्रभु जाति किसी नीची जाति के कर्मकांड और जीवन शैली में छोटे मोटे परिवर्तनों को तो संभवतः उपेक्षा कर देती थी, पर यदि वह परंपरा से चली आती अथवा आर्थिक या कर्मकांडी सेवाएं देने से इनकार करे अथवा किसी महत्वपूर्ण उच्च जाति चिन्ह को हथियाने लगे तो दंड तुरंत मिलता था। पोकाक ने पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के केरा जिले में अपने कार्य क्षेत्र से एक घटना का विवरण दिया है। मोटा गांव की एक कहानी सुनाई जाती है जो केवल 30 वर्ष पुरानी घटनाओं से संबंधित है। उस समय नानू गांव का एक बारिया मोटा गांव में होकर निकला। उसने खास पाटीदार ढंग से धोती पहन रखी थी। उसकी वैसी ही बड़ी ऊपर उठी हुई मूछें थी जैसी कि उन दिनों पाटीदार रखा करते थे और वह एक हाथ में हुक्का लिए पीता जा रहा था। एक प्रमुख पाटीदार ने उसे पकड़वा कर जबरदस्ती उसकी मूछें मुड़वा दी और उसे हुक्म दिया कि आगे से कभी पाटीदार जैसा दिखने की कोशिश न करे और जब भी किसी पाटीदार गांव में होकर निकले तो हुक्के को पीठ पीछे रख कर चले, नहीं तो उसकी पिटाई होगी। आज ऐसी भिन्नताओं को जबरदस्ती बनाए रखने का अधिकार न होने के कारण वस्त्रों में कहीं अधिक एकरूपता आ गई है, पर अपनी अलग पोशाक पर अब पाटीदार भी कोई जोर नहीं देते। जिस रिवाज को किसी समय इतना महत्व दिया जाता था उसके प्रति उदासीन होना उसे छोड़ देने के ही बराबर है। और आज का मध्यवर्गीय वारिया अपने औपचारिक और उत्सवोचित रूप और रंग ढंग का आदर्श कोई 30 वर्ष पहले के पाटीदार शैली को बनाता है। ऐसी ही घटनाओं की सूचनाएं पिछले 50 वर्षों में ग्रामीण भारत के अन्य भागों में भी मिली है। विलियम रो ने जिक्र किया है कि जब 1936 में उत्तर प्रदेश के सेनापुर गांव में नोनियों ने नमक बनाने वाले की एक निची जाति जो अब कुएं तालाब खोदने सड़क कूदने और ईटे और टाइल बनाने का काम करने लगी है, सामूहिक रूप से यज्ञोपवीत पहना तो कुछ क्षत्रिय जमींदारों ने नोनियों की पिटाई की, उनकी यज्ञोपवीत को तोड़कर फेंक दिए और जाति के ऊपर सामूहिक जुर्माना कर दिया। कुछ वर्षों बाद नोनियों ने फिर यज्ञोपवीत पहनना शुरू किया पर अब कोई विरोध नहीं हुआ। उनके पहले प्रयास में सीधी सीधी सार्वजनिक चुनौती थी पर दूसरी बार नोनियों ने यज्ञोपवीत चुपचाप और वैयक्तिक रूप से पहनना शुरू किया। 1921 की भारतीय जनगणना रिपोर्ट से पता चलता है कि जब उत्तर भारत के अहिरों ने अपने आप को क्षत्रिय कहने और यज्ञोपवीत पहनने का निश्चय किया तो उनके कार्य से प्रभुता संपन्न उच्च जातियों में बड़ा रोष फैला था। उदाहरण के लिए उत्तर बिहार में उच्च जाति राजपूतों और भूमिहार ब्राह्मणों ने अहिरों को द्विजों के चिन्ह धारण करने से रोका था जिसके परिणाम स्वरूप मारपीट और मुकदमेबाजी की नौबत आ गई थी। हट्टन ने भारत के दक्षिणी छोर पर रामनाड जिले की एक प्रभु जाति कल्लर और हरिजनों के बीच ऐसे ही संघर्ष का वर्णन किया है। दिसंबर 1930 में रामनाड में कल्लरों ने 8 निषेध घोषित किए जिनका उल्लंघन करने पर कल्लरों द्वारा बाह्य हरिजनों के साथ मारपीट होती थी, उनकी झुपड़ियां जला दी जाती थी, खलिहान और दूसरे सामान को नष्ट कर दिया जाता था और पशु लूट लिए जाते थे। वे 8 निषेध निम्नलिखित थे: 1, आधे द्रविड़ सोने चांदी के गहने नहीं पहनेंगे; 2, पुरुष अपने कुल्हों के ऊपर वस्त्र नहीं पहनेंगे; 3, पुरुष कोट कमीज या बनियान नहीं पहनेंगे; 4, कोई आदि द्रविड़ अपने बाल नहीं छटाएगा; 5, आदि द्रविड़ अपने घरों में मिट्टी के बर्तन के सिवाय और किसी प्रकार के बर्तन का व्यवहार नहीं करेंगे; 6, उनकी स्त्रियां अपने शरीर का ऊपरी भाग कपड़ों से खकुई ब्लाउज या तावड़ी चोंगे की तरह पहने जाने वाले वस्त्र से नहीं ढकेंगी; 7, उनकी स्त्रियां फूल या केसर लेप का व्यवहार नहीं करेंगी; 8, पुरुष धूप या वर्षा से बचने के लिए छतरी का उपयोग नहीं करेंगे और चप्पल न पहनेंगे। इस भांति प्रभु जातियां अपने प्रभाव क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखती हैं। उनके द्वारा बनाए और लागू किए जाने वाले नियमों में बहुत से स्थानीय होते थे पर कुछ नियम जैसे नीच जातियों द्वारा यज्ञोपवीत धारण करने का निषेध महान परंपरा के नियम होते थे, किंतु यह संभव था कि उन क्षेत्रों में जहां किसान जातियों को असंदिग्ध प्रभुता प्राप्त है उनका महान परंपरा का ज्ञान काम चलाऊ ही हो। पारंपरिक व्यवस्था में महान परंपरा के ज्ञान का रक्षक केवल ब्राह्मण पुरोहित ही होता था, इसलिए प्रभु जाति इस बात का प्रबंध करके ही पुरोहित केवल उच्च जातियों का ही काम करे सांस्कृतिक सीमाओं के उल्लंघन को रोक लेती थी। यह बात समझ में आती है कि पुरोहित भी प्रभु जाति और अपने सभी जाति भाइयों की भावनाओं का बड़ा आदर करते थे, किंतु प्रभु जाति का कार्य केवल बहुत्ववादी संस्कृति के संरक्षक होने तक ही सीमित न था। वह निम्न जातियों में प्रभु जाति कि अपनी प्रतिष्ठादायक जीवन शैली का अनुकरण करने की इच्छा भी हो जगाती है। निम्न जातियों को यह काम घुमा फिराकर करना पड़ता था। जल्दीबाजी में करने से तुरंत दंड मिलने का डर रहता था। वे ऐसी बातों के अनुकरण से बचती थी जिनसे प्रभु जाति को अधिक रोष हो और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ने में सफलता की संभावना अधिक रहती हो। डी आर चानना के एक ऐसे क्षेत्र में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के प्रसार का विवेचन किया है जो 1947 में देश के विभाजन तक इस्लाम और कुछ पश्चिम एशियाई सांस्कृतिक रूपों से बहुत अधिक प्रभावित थी। वहाँ सिख धर्म को, जो स्वयं भी हिंदू और इस्लामी धर्मों के समन्वय का परिणाम है, गौड़ प्रभुता प्राप्त थी, जबकि हिंदुओं में इस्लाम और सिख धर्म दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता था। हिंदुओं में व्यापारी जातियां खत्री, अरोरा, अग्रवाल आदि महत्वपूर्ण थी। ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था और विद्या की दृष्टि से भी कुछ विशेष न था। ध्यान देने की पहली चीज यह है, ऐतिहासिक तथ्य है कि इस प्रदेश में ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षित दुर्बल है। दस्तकारों, शिल्पियों और किसानों के बड़ी संख्या में मुसलमान बनाए जाने के बाद से इस क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं की संख्या अपेक्षित कम ही रही और वे मुसलमानों पर प्रभुतापूर्ण प्रभाव डालने की बजाय स्वयं उनसे प्रभावित हुए हैं। इसके प्रमाण के रूप में कई बातों का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे इस प्रदेश में मंदिरों की अपेक्षा कमी, शास्त्रों में पारंगत ब्राह्मणों का अभाव, कुछ ही दिन पहले तक संस्कृत विद्यालयों का सर्वथा अभाव और खान पान संबंधी निषेधों के पालन में अपेक्षित शिथिलता आदि। यद्यपि हिंदू स्त्रियां मुसलमान स्त्रियों की भांति बुर्का नहीं ओढ़ती थी, पर वे बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बाहर भी नहीं निकलती थी। हिंदू संस्कृत मंत्रों का पाठ नहीं करते थे और वे अपने बच्चों को मदरसों में मौलवियों के पास पढ़ने भेजते थे। यज्ञोपवीत वे केवल विवाह के समय ही पहनते थे। विवाह में आवश्यक वैदिक संस्कार होता था जिसमें ब्राह्मण पुरोहित का काम करता था। हिंदू धर्म की महान परंपरा के बारे में जानकारी बहुत कम थी। चासना का कहना है कि धर्म के मामले में हिंदू इस्लाम से, विशेषकर सूफी संतों के उपदेशों से बहुत गहरे प्रभावित थे। चासना का विवरण से यह चित्र समझ आता है कि भूतपूर्व पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत भर में मुसलमानों की प्राथमिक प्रभुता थी और सिखों की गौर प्रभुता इस प्रदेश के कुछ चुने हुए इलाकों में थी। हिंदुओं में व्यापारी जातियां महत्वपूर्ण थी। ब्राह्मणों में न तो धन था न विद्या। वे सिख धर्म से भी प्रभावित थे और इसलिए ठीक वह समूह जो हिंदू जनता के ब्राह्मणीकरण संस्कृतिकरण में सहायक हो सकता था, ऐसा करने की स्थिति में न था। 19वीं शताब्दी में पंजाब के अल्पतम संस्कृतिकरण से प्रकट होता है कि किस तरह प्रभु समूह की जीवन शैली किसी प्रदेश को प्रभावित करती है। अंग्रेजी राज से उत्पन्न जटिल प्रवृत्तियों के कारण ही पंजाबी हिंदुओं में संस्कृतिकरण बढ़ा। आर्य समाज तथा उसकी प्रतिद्वंदी सनातन धर्म सभा और उनके द्वारा स्थापित दोनों प्रकार की पारंपरिक गुरुकुल और ऋषिकुल और आधुनिक दयानंद एंग्लो वैदिक और सनातन धर्म सभा के स्कूल तथा कॉलेज शिक्षा संस्थाओं ने पंजाब के हिंदुओं में पारंपरिक और आधुनिक विद्या का प्रसार किया। प्रभु जाति का प्रभाव सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों तक वंश क्रम और दत्तक विधान के सिद्धांतों जैसी मूलभूत बातों तक फैला हुआ जान पड़ता है। इस भांति दो पितृकुलीय तमिल व्यापारी जातियों में अंगदीपुरम के तरकनों और पालाघाट तालुक के मन्नडियरों ने कोई 120 से 150 वर्ष के भीतर क्रमशः पितृकुलीयता छोड़कर मातृकुलीयता ग्रहण कर ली। तरकन स्त्रियों के पति नमुद्री ब्राह्मण या सामंतन परिवारों के होते थे और तरकन पुरुष किरियम नायर स्त्रियों से विवाह करते थे। कुछ तरकन स्त्रियों के संबंध में बिल्ला तिरी राजकुल के पुरुषों से भी थे और यह भाग्यशाली तरकन कुलों के लिए सम्मानित संपत्ति का स्रोत होता था। आप्रवासी चालियान जुलाहों की जाति प्रोन्नति तालुक के कुछ भागों में मातृकुलीयता मानती है और अन्य स्थानों पर पितृकुलीयता। प्रोन्नति तालुक के कुछ चालियानों ने सन 1940 ईस्वी के बाद से नायर केरल की मातृकुली प्रभु जाति नाम ग्रह कर लिया था। त्रिवांकुर के मंदिरों में काम करने वाले पितृकुलीय कुरुक्कल 18वीं शताब्दी के अंत में मातृकुली हो गए और उसके बाद कुरुक्कल स्त्रियों ने नम्बूद्री पुरुषों के साथ अनुलोम संबंध होने लगे और कुरुक्कल पुरुष मातृकुली मरण स्त्रियों से विवाह करने लगे। कुरुक्कल शक्तिशाली पेटियों के कारण पितृकुलीयता ग्रहण करने को बाध्य हुए जान पड़ते हैं। एस एल कालिया ने उत्तर प्रदेश के जौनसार बाबर और मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र की जातियों में जनजातीकरण की प्रक्रिया का वर्णन किया है। इसके अनुसार जनजातियों के बीच अस्थायी रूप में रहने वाले उच्च जातियों के हिंदू उनके ऐसे रीति रिवाज कर्मकांड और विश्वास अपना लेते हैं जो बातों में उनके अपने रीति रिवाज आदि से सर्वथा विपरीत होते हैं। कालिया के उदाहरणों से पता चलता है कि अपने संदर्भ समूहों से दूर पड़ जाने पर लोगों की जीवित शैली और मान्यताओं में कितने व्यापक परिवर्तन आ जाते हैं। उच्च जातियों के हिंदुओं का इतनी आसानी से नई संस्कृति को अपना लेना शायद उसके निवास के अस्थायी होने के कारण भी था और उसमें से कुछ लोग यह समझते भी थे। इस भांति जौनसार बाबर क्षेत्र में जो ब्राह्मण मांस खाते शराब पीते और पहाड़ी स्त्रियों से संसर्ग रखने लगे उन्होंने कालिया से कहा, हमें यह सब जलवायु के कारण करना पड़ता है, यह मांस के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। जिस दिन हम यमुना पार करके देहरादून में अपने घरों को लौटेंगे उसी दिन प्रायश्चित करके अपने आप को पवित्र कर लेंगे। किंतु यह स्थिति बहुत सी जातियों वाले ऐसे गांव की स्थिति से भिन्न है जहां एक ही जाति की प्रभुता हो। उस गांव में हर जाति जानती है कि उसे किन किन नियमों का पालन करना है और उनका उल्लंघन करने पर क्या दंड मिलेगा। संबद्ध या प्रभु जाति के बुजुर्ग लोग नियम तोड़ने पर जुर्माने शारीरिक कष्ट या जाति बहिष्कार की सजा देते थे, पर दंड की धमकी भी अप्रभु जातियों को प्रभु जातियों की जीवन शैली के प्रशंसक होने और क्रमशः उसका अनुकरण करने से रोकने में सफल नहीं होती। इसलिए यह संभव है कि ब्राह्मण या अन्य उच्च जातियों के थोड़े से लोग स्थानीय प्रभु जाति की संस्कृति के तत्वों को क्रमशः आत्मसात करें, वे देशी हो जाएं और संस्कृतिकरण के बाहक बनने के बजाय स्वयं स्थानीय राजपूत जाट अहिर रेड्डी कम मराठा और उकलिंग संस्कृति का अनुकरण करने लगे। ऐसा होने की संभावना तब और भी बढ़ जाती है जब संचार साधन अच्छे न हो और नगरों तीर्थ स्थानों और मठों से संपर्क नियमित न हो। संक्षेप में यह संभव है कि महान परंपरा के प्रतिनिधि लघु परंपराओं के आगे घुटने न टेक दें और ऐसा लगता है कि बीच बीच में यह होता भी रहा है। किंतु यह मानना सही नहीं होगा कि ब्राह्मण की संस्कृति में संस्कृतिकरण सदा ही बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के सनाढ़ूय ब्राह्मणों की जीवन शैली में अल्पतम संस्कृतिकरण हुआ है। 1951-52 में जब मैरियट ने दिल्ली से कोई 100 मील दक्षिण पूर्व में उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गाँव किशनगढ़ी का अध्ययन किया तो वहाँ सनाढ़ ब्राह्मणों की प्रभुता थी। मैरियट ने लिखा है, इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की अपेक्षा अल्प संस्कृतिकरण में ही इस बात का सूत्र छिपा है कि किशनगढ़ी ही बाकी जातियों में संस्कृतिकरण की इतनी धीमी गति का और उनके धर्म में महान परंपरा के तत्वों की अपेक्षा इतने अल्प अनुपात का क्या कारण है। जाति सोपान में अपने स्थान और पुरोहित कार्य से संबंध के कारण ब्राह्मण हर जगह महान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ संभाव्य प्रतिनिधि होते हैं, किंतु चूंकि किशनगढ़ी में उनके धार्मिक रूप अधिकांश तह लघु परंपरा मूलक हैं, इसलिए यहाँ ब्राह्मणों से जो कुछ क्षणकर निचली जातियों तक पहुँचा है उसका भी अधिकांशतः लघु परंपरा मूलक होना अनिवार्य है। इस भांति करवा चौथ का त्योहार जिसके संस्कृतीय संदर्भ के अभाव का वर्णन ऊपर किया जा चुका है, किशनगढ़ी में खुल्लम खुल्ला ब्राह्मण पत्नियों का त्योहार माना जाता है कि वे विधवा होने पर पुनर्विवाह न करें। पिछले पीढ़ियों में यह त्योहार किशनगढ़ी की निचली जातियां भी मानने लगी हैं। इसी तरह गांव के पुजारी का भी पद जो किशनगढ़ी के सबसे प्रभावशाली ब्राह्मण कुल को मिलता है एक असंस्कृति देवी माता का है जिसे चामर कहते हैं। जब निचली जातियों के लोग ब्राह्मणों की इस शक्तिशाली देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वे अपनी पूजा सामग्री महान परंपरा के किसी मंदिर को नहीं बल्कि चामर के मिट्टी पत्थर के अनगढ़ टीले को ही ले जाते हैं, काले अक्षरों में मुद्रित पंक्तियां मेरे द्वारा। ग्रामीण भारत के अधिकांश भागों में ऐसी भूस्वामी किसान जातियां मौजूद हैं जिन्हें या तो असंदिग्ध प्रभुता प्राप्त है या वे क्षत्रिय अथवा ब्राह्मणों में से किसी अन्य जाति के साथ प्रभुता में साझेदार हैं। स्वाधीन भारत में जो परिवर्तन हुए हैं वे सामान्यतः ऐसे हैं जिनसे किसान जातियों की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और आम तौर पर वे राजपूत और ब्राह्मण जैसी उच्च जातियों को गिराकर बढ़ी है। ग्रामीण भारत का ऐसा नक्शा बनाया जा सकता है जिसमें प्रत्येक गांव के प्रभु जातियां दिखाई गई हों और इसके लिए बड़े भारी परिश्रम की आवश्यकता होगी। ऐसे व्यवस्थित नक्शे के अभाव में कुछ एक अधिक प्रभु जातियों के नाम यहाँ मिले लिए जा सकते हैं। उत्तर भारत के में गांव के प्रभु जातियों को अजगर नाम देते हैं जो दलित अल्पसंख्यक जातियों में प्रभु जातियों के आतंक का सूचक है। अजगर चार प्रभु जातियों के नामों के प्रथम अक्षरों को लेकर बना है, अहिर ज जाट ग गुजर और राजपूत। पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में सदगोप, गुजरात में पाटीदार और राजपूत, महाराष्ट्र में महाराठा, आंध्र प्रदेश में कम और रेड्डी, मैसूर में ओक्कली जन और लिंगायत, मद्रास में बिल्लास, गाउंडर, पड़ायाची और कल्लर और केरल में नायर, सीरियाई, ईसाई और इजवन प्रभु जातियां हैं। देहातों में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों के लिए मेरे और कभी कभी ब्राह्मणों के लिए भी प्रभु जातियां ही आदर्श प्रस्तुत करती हैं। जहां उनकी जीवन पद्धति में किसी हद तक संस्कृतिकरण हो चुका है, जैसा उदाहरण के लिए पाटीदारों, लिंगायतों और कुछ बिल्लालों में हो चुका है, वहां जिस क्षेत्र के ऊपर उनकी प्रभुता का प्रसार है उसकी संस्कृति में परिवर्तन होने लगता है। पाटीदारों का पिछले 100 वर्षों में अधिक संस्कृतिकरण हुआ है, इसके प्रभाव गुजरात के कैरा जिले में बारिया सहित सभी अन्य समूहों की संस्कृति पर पड़े हैं। दक्षिण भारत में लिंगायतों और बिल्लालों की जीवन शैली में भी संस्कृतिकरण और पाटीदारों के कहीं पहले से हुआ है। लिंगायत मैसूर राज्य में विशेषकर तुंगभद्रा नदी के उत्तरवर्ती प्रदेश में सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों के प्रबल प्रेरक रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि उन्होंने विचारों के प्रसार के लिए संस्कृत के बजाय जनभाषा कन्नड़ का उपयोग किया और इस क्षेत्र में बहुत से समृद्ध और प्रतिष्ठित मठ मौजूद थे। ये मठ विभिन्न जातियों के लोगों को लिंगायत संप्रदाय की दीक्षा देते रहे हैं और आज भी देते हैं। मराठे रेड्डी और पिछले दिनों पड़ायाची, जिन्होंने अपना नाम बदलकर बनिन्न कुल क्षत्रिय रख लिया है, क्षत्रिय होने का दावा करते रहे हैं। अंग्रेज पूर्व काल में क्षत्रियत्व के दावे के पहले यदि अधिक ऊंचे नहीं तो कम से कम गांव के स्तर पर राजनीतिक सत्ता का अधिकार और जातियों की जीवन शैली के अनुकरण की प्रवृत्ति आमतौर पर पाई जाती थी। इससे निम्न जातियों में प्रतिक्रिया की श्रृंखला जैसे बन जाती और उनमें से प्रत्येक अपने अपने हिसाब से क्षत्रिय जीवन शैली का अनुकरण करने लगती। इस भांति कैरा जिले में मौजूदा बारिया 30 वर्ष पहले के पाटीदारों के अनुकरण में लाल पगड़ी और तलवार धारण करते हैं। स्वयं पाटीदार कुछ समय पहले तक क्षत्रियों में गिने जाने के इच्छुक थे, अब वे वैश्य कहलाना अधिक पसंद करते हैं। आधुनिक गुजरात में भी बहुत सी जातियां क्षत्रिय के रूप में मान्यता चाहती हैं। पोकाक के अनुसार चरोतार में लगभग प्रत्येक जाति की अछूत 1.5 तक की अपनी अपनी जाति कथाओं और गाथाओं में किसी न किसी योद्धा अथवा राजा से उद्भव का इतिहास मिलता है। ये दावे तभी कारगर हो सकते हैं जब उचित मात्रा में पैसा खर्च करके ब्राह्मणीय और लौकिक प्रतिष्ठा द्वारा उन्हें सहारा दिया जाए। क्षत्रियों की भांति ब्राह्मणों ने भी ग्रामीण तथा नागर भारत में प्रभुता भोगी है। संख्या की दृष्टि से वे कदाचित ही किसान जातियों के सामने ठहर सके हों, पर उन्हें कर्मकांडी प्रधानता प्राप्त रही है, विशेषकर ऐसे समाज में प्राप्त रही है जिसमें धार्मिक विश्वास विशेष रूप से प्रबल थे। अंग्रेज पूर्व भारत में और रजवाड़ों के में पाप धार्मिक विश्वास विशेष रूप से प्रबल थे। अंग्रेज पूर्व भारत में और रजवाड़ों में पाप के प्रायश्चित और पुण्य के अर्जन का एक लोकप्रिय उपाय ब्राह्मणों को भूमि, घर, सोना तथा अन्य वस्तुओं का दान करना था। यह दान राजकुमार के जन्म, विवाह, राज्य अभिषेक और मृत्यु के अवसरों पर किया जाता था। ब्राह्मणों को सरकारी कर्मचारी, विद्वान, पुजारी, पुरोहित और देश के कुछ भागों में देहाती लेखपाल के रूप में भी उन्हें भूमि मिल जाया करती थी। सर्वोच्च जाति के सदस्य होने के कारण ब्राह्मणों को जो भारी प्रतिष्ठा पहले ही प्राप्त थी, वह भूमि का स्वामित्व पाकर और भी बढ़ जाती थी। तीर्थ स्थान और मठ भी संस्कृतिकरण के स्रोत थे। प्रत्येक तीर्थ स्थान का अपना भीतरी प्रदेश होता था। विख्यात तीर्थ केंद्र भारत भर के यात्रियों को आकर्षित करते थे और छोटे छोटे तीर्थ स्थान आसपास के गांवों पर निर्भर रहते थे। भारत व्यापी प्रभाव के तीर्थ स्थानों में भी किसी एक या कुछ एक क्षेत्रों के ही तीर्थ यात्री अधिक आते थे, देश के हर भाग से समान रूप से नहीं, किंतु छोटे क्षेत्र के तीर्थ स्थानों में संभवतः कुछ विशेष जातियों अथवा गांवों के तीर्थयात्री अधिक आते थे, सबके नहीं। ऐसे सीमित करने वाले तत्वों के बावजूद तीर्थ स्थान अथवा मठ का प्रभाव उसके भीतरी क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति की जीवन पद्धति पर पड़ता था। जब किसी प्रभु जाति का कोई अंश किसी तीर्थ स्थान अथवा मठ से प्रभावित होता तो संस्कृतिकरण का प्रसार उस क्षेत्र में रहने वाले अप्रभु जातियों में उदग्र रूप में और अन्य क्षेत्रों में क्षैतिज रूप में होता था। यह प्रसार पिछले वर्षों में औद्योगिकीय, संस्थागत और सैद्धांतिक आदि अनेक कारणों से बहुत आसान हो गया है। संस्कृतिकरण भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रधान प्रक्रिया है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्रत्येक भाग में होती रही है। यह संभव है कि कुछ युगों में अधिक प्रबल रही हो और भारत के कुछ भागों में अन्य भागों की अपेक्षा अधिक संस्कृतिकरण हुआ हो, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि यह प्रक्रिया सर्वव्यापी रही है। जैसा मैंने पहले ही कहा, संस्कृतिकरण के आदर्श एक नहीं तीन चार रहे हैं और भारतीय इतिहास के प्रारंभिक युग में विभिन्न आदर्शों के बीच कुछ प्रतिस्पर्धा भी थी। उदाहरण के लिए परवर्ती वैदिक ग्रंथों में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष का उल्लेख है। कभी कभी क्षत्रिय ब्राह्मणों की सर्वोपरिता को चुनौती देते थे और हमें ऐसी घोषणाएं मिलती हैं कि क्षत्रियों से श्रेष्ठ कर कोई नहीं और पुजारी या पुरोहित राजा का अनुयायी मात्र है। जैन और बौद्ध धर्मों में भी सर्वोपरिता के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष के चिन्ह विद्यमान हैं। घुर्रे के अनुसार महावीर और बुद्ध के मूल उपदेशों में जाति के संबंध में निश्चित वक्तव्य भी जो भी हो, इन धार्मिक आंदोलनों के प्रारंभिक साहित्य के सूक्ष्म अध्येता को को यह निश्चित रूप से लगेगा कि उनके लेखकों का मुख्य सामाजिक पक्ष लक्ष्य क्षत्रियों की प्रधानता पर आग्रह करना था। यह सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी जैन तीर्थकर क्षत्रिय के अतिरिक्त अन्य किसी परिवार में कभी पैदा नहीं हुआ। बौद्ध साहित्य में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें चार जातियों की गणना में शीर्ष स्थान क्षत्रियों का है, ब्राह्मण का उसके बाद। इस बार क्षत्रिय ब्राह्मणों से पहले मान्यता पाने का दावा बड़े आक्रामक ढंग से करते थे। इन नए धर्मों ने बहुत से व्यापारियों को भी आकर्षित किया जो क्षत्रियों की भांति ही ब्राह्मणों की प्रभुता से क्षुब्ध थे और अपने ऊपर जाति व्यवस्था द्वारा थोपी गई अक्षमताओं को दूर करने का कोई रास्ता चाहते थे। मगर जैसा पहले देखा जा चुका है, जाति सोपान में वर्ण आदर्श में प्रत्येक वर्ण की स्थिति के बारे में कोई संशय नहीं और वह सोपान अटल है। हिंदुओं का धार्मिक साहित्य जो हर युग में अधिकांशतः ब्राह्मणों द्वारा ही रचा गया है, स्वभावतः ब्राह्मण सर्वोपरिता के विचार को पुष्ट करता है और ब्राह्मणों को सुखी और समृद्ध रखने से राजा और प्रजा को होने वाले लाभों पर बल देता है। पर यह चित्र किस हद तक भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों में और भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में यथार्थ स्थिति के अनुरूप है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर विस्तृत प्रादेशिक इतिहासों के उपलब्ध होने के बाद ही दिया जा सकता है। यहाँ हम यह मान लेते हैं कि ऐसे इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए सामग्री मौजूद है। इस बीच यह स्थापना तर्कसंगत है कि राजनीतिक अथवा आर्थिक लौकिक सत्ताधारी हर जगह प्रमुख होते थे और ब्राह्मण उनके महत्व को समझता था तथा वे बदले में अपनी गतिशीलता को वैध बनाने वाले के रूप में ब्राह्मण की उपयोगिता स्वीकार करते थे। संक्षेप में, ब्राह्मणों में अपनी सर्वोपरिता स्थापित करने की इच्छा के साथ साथ दूसरों को उपलब्ध सत्ता के सम्मान की बड़ी पक्की समझ भी थी। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि क्षत्रियों और वैश्यों से दान लेने वालों के रूप में ब्राह्मणों में अन्य समूहों की अपेक्षा राजनीतिक और आर्थिक सत्ता की पहचान की संभावना भी अधिक थी। इसके अतिरिक्त सभी ब्राह्मण पुरोहित अथवा विरक्त सन्यासी नहीं होते थे। जैसा डेनियल्स ई ग्लॉल्स ने लिखा है, सबसे पहले तो वे ब्राह्मण थे जो धन चाहते थे। धन प्राप्ति का मार्ग था शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, विशेष रूप से शास्त्रों की शिक्षा। आज हम जैसे कुछ एक संस्कृतज्ञों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि हमारी विद्या से एक जमाने में बहुत से सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते थे। प्रारंभिक ब्राह्मण जीवन पद्धति में वैदिक युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। गोमांस खाने का निषेध हुआ, पशु मांस का उपयोग आम था, विशेषकर बड़े भोजों और पारिवारिक सम्मेलनों के अवसर पर, किंतु गोवध के क्रमशः नापसंद किए जाने लगा। जैसा कि कई स्थलों पर उसके लिए अंधन्य शब्द से स्पष्ट है, मदिरा पान भी जो वैदिक कर्मकांड और ब्राह्मण आहार दोनों का ही अंग था, वैदिकोत्तर भारत में बंद हो गया। आज कोई भी ब्राह्मण समूह परंपरा से मदिरा पाई नहीं है और केवल कुछ ही ब्राह्मण समूह सामिश भोजी हैं। ब्राह्मणों की जीवन पद्धति में यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे जातियां जिस ब्राह्मण आदर्श का अनुसरण करती हैं, यह वैदिकोत्तर ब्राह्मणों का ही है। क्षत्रिय और वैश्य आदर्श भी महत्वपूर्ण हैं, पर ब्राह्मण आदर्श के समान प्रभावी नहीं, क्योंकि कुछ एक क्षत्रिय और लगभग सभी वैश्य आहार कर्मकांड और कुछ एक महत्वपूर्ण धार्मिक धारणाओं के सामने में ब्राह्मण आदर्श को मानते हैं। केवल पिछले कुछ दशकों के पाश्चात्य आदर्श के प्रभाव अभाव में वृद्धि के साथ ही हिंदुओं के कुछ वर्गों में ब्राह्मण आदर्श का महत्व घटा है। इंगॉल्स ने लिखा है कि वैदिक युग के अंत के दिनों में ब्राह्मण वर्ग के सदस्यों को सन्यासी श्रेणियों में भर्ती करने के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। इस बात के प्रभाव मिलते हैं कि ऐसी श्रेणियां अब्राह्मण देशी निवासियों में बहुत पहले से मौजूद थी। इसी युग में पहुंचते पहुंचते ब्राह्मण सन्यासियों की संख्या बहुत बढ़ गई, किंतु आमतौर पर वैदिकोत्तर ब्राह्मणों में होने वाले परिवर्तन का कारण बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव को ही माना जाता है। यह अध्ययन अत्यंत ही रोचक हो सकता है कि किस प्रकार शताब्दियों के दौरान क्रमशः शुद्धतावादी जीवन शैली हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषता बन गई और कैसे उस जीवन शैली का संबंध ब्राह्मणों से और जैनों लिंगायतों तथा अन्य संप्रदायों से जुड़ गया। पर यहाँ मेरा काम वह नहीं है। मैं यहाँ इतना कहकर ही संतोष करूंगा कि मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन ने जो निम्न जातियों और गरीबों को भी समेटने वाला अखिल भारतीय आंदोलन था, इस बात पर जोर देकर कि धर्म में कर्मकांड या जाति की बजाय ईश्वर भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, पूर्ववर्ती शुद्धतावाद को अधिक गहरा और व्यापक बना दिया। भक्त संतों ने सभी धर्मों को मूलभूत समानता और ईश्वरत्व की एकता का उपदेश दिया और यह माना कि मनुष्य का गौरव उसके जन्म पर नहीं कर्म पर निर्भर होता है। उन्होंने धर्म में अत्यधिक कर्मकांड और औपचारिकता के और पुरोहितों के प्रधानता के विरुद्ध आवाज उठाई और हर व्यक्ति की मुक्ति के उपाय के रूप में सहज भक्ति और आस्था पर जोर दिया। भक्ति आंदोलन के प्रसाद से नीच जातियों के कुछ व्यक्ति भी, जिनमें हरिजन भी हैं, धार्मिक नेता बन सके। भक्ति आंदोलन ने स्त्री पुरुष के भेद को भी अस्वीकार किया और आंदोलन अक महादेवी और मीरा जैसी भक्त महिलाएं संतों की कोटि में गिने जाने लगी। निर्विवाद रूप से भक्ति आंदोलन का वास्तविक प्रभाव यह है कि उसने समानता प्राप्ति के लिए एक प्रहार किया और उच्च जातियों को उच्च व्यापक आक्रमण के लिए तैयार कर दिया, जो बाद में अंग्रेजी राज में हुआ। दुर्भाग्यवश सोपान की अवधारणा के विरुद्ध भारतीय संघर्ष का कोई इतिहास अभी तक नहीं लिखा गया है। भक्ति के विभिन्न पंथ एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने संस्कृति हिंदू धर्म का सार विशाल और अपढ़ जनता तक पहुंचाने के लिए संस्कृत के बजाय प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग किया। वी राघवन ने न केवल इस प्रक्रिया में होने की पुष्टि की है, बल्कि यह भी कहा है कि अंततः प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य से महान परंपरा की परिपुष्टि हुई। जहां भी स्थानीय धार्मिक आंदोलन प्रारंभ तो संस्कृत की प्रेरणा से हुए, पर उनके सुदृढ़ होने का भाषागत वाहन प्रादेशिक भाषाएं ही थी। वहां संस्कृतिकरण का दूसरा प्रयास हुआ, जिसने संस्कृत में फिर से रचनाएं उत्पन्न की। प्रारंभ में जनता को उसकी अपनी भाषाओं में दी गई सामग्री को फिर से संस्कृत में आत्मसात करने से संस्कृत के भक्ति साहित्य में भी वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए तमिल शैव मत में मदुरै हालस्य महात्म्य की कथा और 63 शैव संतों के चरित्र संस्कृत में लिखे गए और तमिल वैष्णव मत के वेदांत देशिक ने वैष्णव आलवरों के तमिल भजनों के सारांश संस्कृत में रचे थे। संस्कृतिकरण के ब्राह्मणीय और कुल मिलाकर शुद्धतावादी आदर्श को सर्वोपरि प्रधानता प्राप्त रही है और मदिरा छेवी तथा मांसाहारी शक्ति तथा अन्य समूह भी अन्य आदर्शों से इसकी श्रेष्ठता निश्चित रूप से स्वीकार करते रहे हैं। इस भांति सामिष भोजियों में मछली खाने वाले अपने आप को भेड़ बकरी का मांस खाने वालों से श्रेष्ठ समझते हैं। भेड़ बकरी का मांस खाने वाले मुर्गी या सुअर का मांस खाने वालों से अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और स्वयं गोमांस खाने वालों को अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सभी मांसाहारी परंपरा से मदिरा सेवी नहीं होते, वह भी राजस्थान जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर नीच जातियों का चिन्ह है। उदाहरण के लिए दक्षिण मैसूर में जिन बर्तनों में मांस पकाया जाता है उन्हें सामान्यतः अलग रखा जाता है और भात या सब्जी बनाने के लिए उनका प्रयोग नहीं किया जाता। गांवों में मुख्य रसोई से बाहर और अलग चूल्हे पर ही मांस पकाने का रिवाज है। त्योहार के दिन मांस नहीं पकता, क्योंकि वह दिन किसी न किसी देवता की पूजा के कारण पवित्र होता है, पर अगले दिन पकाया जा सकता है। विवाहों में भी सामिष भोजन विवाह संस्कार पूरा हो चुकने के बाद अगले दिन ही पकता है। दिल्ली पंजाब के क्षेत्र में प्रायः जाति के पुरुष ही मांस खाते हैं, स्त्रियां शाकाहारी होती हैं। ऐसे ही जिन जातियों में स्त्री पुरुष दोनों मांसाहारी हैं, उनमें पुरोहित या पुजारी प्रायः शाकाहारी होते हैं। रामपुर में मेरा एक पड़ोसी पुजारी था जो मांसाहारी गड़रिया जाति का था और वह अपना निरामिष भोजन अपने परिवार से अलग अपने बर्तनों में पकाया या बनाया करता था। यही स्थिति रामपुर में हरिजन जाति के मुखिया की भी थी जो अपनी जाति के स्थानीय मंदिर का पुश्तैनी पुजारी था। उसका शाकाहारी और मदिरा त्यागी होने के कारण बड़ा आदर था। यह संभव है कि ब्राह्मणों में भी कोई कट्टरपंथी व्यक्ति संसार का त्याग कर देने वाले सन्यासी से भिन्न अपने वैयक्तिक जीवन में चरम बहिष्कार वृत्ति को अपने धर्म के रूप में स्वीकार कर ले। ऐसी बहिष्कार वृत्ति उसे अपने अन्य मानव बंधुओं के साथ परिवार से बाहर अपने संबंधियों के साथ और कभी कभी तो अपने बच्चों तक के साथ सामाजिक संपर्क से अलग कर देती है। उदाहरण के लिए श्री वैष्णव ब्राह्मणों में यह संभव है कि कोई पुरुष अपने संप्रदाय के धर्म गुरु के आदेश पर यह निश्चय कर ले कि वह केवल अपनी पत्नी के हाथ का बना भोजन खाएगा। ऐसे व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह अपना अधिकांश समय उपासना व्रत ध्यान में मंदिरों में जाने और हरि कथा सुनने में बिताएगा। उसकी जाति के लोग मानते हैं कि वह शुद्ध जीवन बिता रहा है जिससे उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। हाल के वर्षों में शिक्षित और नगरवासी भारतीयों में इन विचारों का प्रभाव बहुत कम हो गया है पर अभी वे पूरी तरह मिटे नहीं है। उदाहरण के लिए 1964 की ग्रीष्म ऋतु में मैसूर नगर में एक वयोवृद्ध श्री वैष्णव ब्राह्मण क्लर्क से मेरी भेंट हुई जिसने बड़े गर्व के साथ मुझे बताया कि उसने अपने संप्रदाय के गुरु से शरण गति ले ली है और अब वह अपने संबंधियों के यहाँ भी कॉफी नहीं ग्रहण कर सकता। इस पर वहाँ मौजूद लोगों में से एक ने व्यंग किया कि अब वह सीधा स्वर्ग में पहुँच जाएगा। मैंने विस्तार से इस बात का विवेचन किया है कि जाति व्यवस्था के वर्णमूलक आदर्श से किस प्रकार पारंपरिक भारतीय समाज के बारे में हमारी समझ विकृत होती है। मैंने इस बात पर जोर दिया है कि पारंपरिक व्यवस्था में कुछ गतिशीलता की गुंजाइश थी। इस खंड में मैं इसी बात पर आगे विचार करूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ही है उसका एक कार्य था लौकिक और कर्मकांडी स्थिति के बीच खाई को कम करना। जब किसी जाति अथवा जाति के अंश को लौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह उच्च स्थिति के पारंपरिक चिन्हों को भी प्राप्त करने का प्रयास करती है। जैसे स्थानीय सर्वोच्च जातियों के रीति रिवाज कर्मकांडी विचार विश्वास और जीवन शैली आदि। इसका अर्थ यह भी था कि विभिन्न संस्कारों के लिए ब्राह्मण पुरोहित की सेवाएं प्राप्त करना, संस्कृति पचांग के त्योहार को मानना, प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करना और धर्म शास्त्रों का अधिक ज्ञान प्राप्त करना। महत्वाकांक्षी जातियां ब्राह्मण ही वैधता दायी क्षमता को पहचानती थी। किसानों की प्रभुता वाले गांव में भी गरीब ब्राह्मण के साथ अन्य जातियों के गरीब लोगों की अपेक्षा भिन्न प्रकार का व्यवहार करना पड़ता था। मध्ययुगीन भारत के अध्येता वर्टन स्टीन ने लिखा है कि दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य के शक्तिशाली शासकों को भी ब्राह्मण की वैधता दायी क्षमता को मानना और उनका मूल्य चुकाना पड़ता था। ये शासक अपनी शक्ति को इस्लाम से हिंदू संस्थाओं की रक्षा के लिए आवश्यक मानते थे और उसी के आधार पर उसका औचित्य सिद्ध करते थे। विजयनगर के शिलालेखों में प्रायः वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना राज्य की नीति का एक लक्ष्य बताया गया है। इस भांति नए योद्धाओं ने दक्षिण भारत के ब्राह्मण हरिजन अभिजन के साथ समझौता कर लिया था। ब्राह्मणों को धार्मिक परमाधिकारों और उच्च कर्मकांडी स्थान के समर्थन के आधार पर यद्यपि भूमिधर ब्राह्मण जातियों की पूर्ववर्ती लगभग संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक स्वायत्तता के समर्थन के आधार पर नहीं, उन्होंने ब्राह्मणों से स्वयं अपनी बढ़ती हुई सैनिक और राजनैतिक शक्ति के लिए मान्यता प्राप्त कर ली थी। ऊपर की काली पंक्तियां मेरे द्वारा पारंपरिक व्यवस्था में उच्च पद के चिन्ह धारण करने की इच्छा में यह निहित था कि आकांक्षी जाति मेरे स्थानीय की अपेक्षा अधिक व्यापक सामाजिक क्षिति से अवगत है। इसका अर्थ था तीर्थ स्थानों और नागर राजधानियों से संपर्क अथवा प्रभावशाली ब्राह्मण समुदाय की स्थानीय उपस्थिति। उदाहरण के लिए, जब किसी जाति की प्रभुता केवल पास पड़ोस के कुछ गांवों तक सीमित होती थी तो प्रायः उसे संस्कृतिकरण द्वारा अपनी स्थिति को वैध बनाने के प्रयास के लिए कोई अवसर न मिलता था। पर जब वह प्रभुता के बड़े क्षेत्र में फैली होती तो हिंदू धर्म की महान परंपरा की शक्ति से उसकी टक्कर होने की संभावना रहती थी। सारे उत्तर भारत में चारण जातियां परंपरा से राजनीतिक सत्ता के वैधीकरण का फलदायी स्रोत मानी जाती थी। इस भांति शाह और शराफ का कहना है, वही वंचा राजपूत के लिए न केवल चारण के रूप में बल्कि गाथाकार के रूप में भी महत्वपूर्ण है। जो भी अपने आप को राजपूत कहना चाहता है उसे यह दिखाना होगा कि वह किसी प्राचीन राजपूत राजवंश का है, और यह माना जाता है कि केवल वही वंचा ही वह अधिकार पूर्वक दिखा सकता है। इसके अतिरिक्त राजपूत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनैतिक संस्थाएं इस विश्वास पर आधारित हैं कि वे सनातन हैं। राजपूत के लिए वही वंचा के अभिलेख संस्थाओं की प्राचीनता के प्रमाण हैं। वही वंचा न केवल राजपूतों के लिए बल्कि जनजाति कोलियों सहित दूसरी जातियों के लिए भी वैधीकरण के साधन प्रस्तुत करते हैं। मध्य गुजरात में राजपूत कोली राजकुलों की लड़कियों से शादी करते थे और इससे कोलियों के को ऊपर उठने का एक सहारा मिल गया है। कोलियों के राजपूतों से अनुलोम विवाह के तथ्य को आधार बनाकर वही वंचा कोली गतिशीलता का अधिकार पत्र प्रस्तुत कर देते हैं। कोई भी जाति समूह साधारणतः अंतर्गामी होता है, पर कभी कभी अंतर्गमन और अनुलोम गमन साथ साथ पाए जाते हैं। निम्नतर समझी जाने वाली जाति का उच्चतर जाति से एक तरफा संबंध होता है, जिससे वह अपनी लड़कियों को विवाह में उच्चतर जाति को देती है। इसके फलस्वरूप निम्नतर समूह में लड़कियों की ओर उच्चतर समूह में लड़कों की कमी होने लगती है। अनुलोम गमन भारत के बहुत से भागों में पाया जाता है, केरल, गुजरात, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, और वह जातियों की ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का प्रमाण है। फोकाक के शब्दावली में अनुलोम गमन जाति के अंतर्भूतकारी पक्ष के अनुरूप है और अंतर्गमन बहिष्कारी पक्ष के। जाति जिन्हें अपने से श्रेष्ठ समझती है उनके साथ अपने को अंतर्भूत करना चाहेगी, और अनुलोम गमन का अस्तित्व इस प्रकार अंतर्भूत होने की के लिए संस्थागत चाहेगी, संस्थागत आधार प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार जातीय अंतर्गमन की प्रथा के निम्नतर जातियों के समानता के दावे को अस्वीकार निहित है। यदि किसी जाति की विभिन्न प्रशाखाओं में स्पष्ट भिन्नता है तो अनुलोम गमन से उस जाति की भिन्नता प्रशाखाओं के बीच भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, इस प्रकार का अनुलोम गमन मध्य गुजरात के केरा जिले में पाटीदारों में और तटवर्ती दक्षिण गुजरात के अनाविल ब्राह्मणों में होता है, पर कोली राजपूत उदाहरण के लिए दक्षिण गुजरात के अनाविल ब्राह्मणों में होता है, पर कोली राजपूत उदाहरण के लिए भांति कभी कभी अनुलोम गमन बड़ी बड़ी संरचनात्मक खाइयों को पार कर जाता है। बंगाल में अनुलोम गमन प्रतिष्ठित ब्राह्मण जातियों में पाया जाता है जिनमें कुलीन सर्वोच्च है। अपने से उच्चतर जाति अथवा एक ही जाति की उच्चतर प्रशाखा के लड़के को विवाह में अपनी लड़कियां देने से लड़की देने वाले कुल और जाति की प्रतिष्ठा बढ़ती है। कुछ निम्नतर समूहों को इससे अंततः उच्चतर समूह के साथ समानता का दावा करने में भी सहायता मिल जाती है। अनुलोम गमन गतिशीलता के लिए एक और प्रकार से भी महत्वपूर्ण है। कोई जाति अथवा जाति की प्रशाखा अपनी जीवन पद्धति का संस्कृतिकरण कर ले और फिर जाति के ढांचे में अपने आसपास की जातियों से या मूल प्रशाखा से श्रेष्ठ होने का दावा करे। अंभा कुर्ग और कुर्गों के मुख्य समूह की एक प्रशाखा है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रबल ब्राह्मण प्रभाव में आए और उन्होंने मदिरा पान छोड़ दिया, शाकाहारी हो गए और यज्ञोपवीत पहनने लगे। कालांतर में उनका एक अलग अंतर्गामी समूह बन गया। यद्यपि 1941 की जनगणना में उनकी कुल संख्या केवल 666 थी, यह माना जा सकता है कि जाति के इतिहास में मूल समूह से ऐसे विखंडन के परिणाम स्वरूप निरंतर नए जाति समूहों का उदय होता रहा है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि पारंपरिक काल में जाति की गतिशीलता के परिणाम स्वरूप विशेष जातियों अथवा जाति की प्रशाखाओं में केवल पदमूलक परिवर्तन ही हुए, इनके ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात अलग अलग जातियां तो ऊपर उठी या नीचे गिरी, पर पूरा ढांचा वैसा ही बना रहा। केवल मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन के साहित्य में ही ऊंच नीच की धारणा को चुनौती दी गई। कुछ संप्रदायों ने तो अपने प्रारंभिक सुधारवादी दौर में बहुत सी जातियों के अनुयायी भी भर्ती किए, पर क्रमशः या तो संप्रदाय ही अंतर्गामी इकाई बन गया अथवा संप्रदाय के भीतर प्रत्येक जाति के अंतर्गमन चालू रहा। इस खंड में मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि इस धारणा के समर्थन में व्यवस्थित प्रमाण प्रस्तुत करूं कि भारतीय इतिहास के प्रत्येक युग में सामाजिक गतिशीलता मौजूद थी। मैं प्राचीन और मध्य युग की गतिशीलता के केवल कुछ ही उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और अंग्रेज शासन की स्थापना के ठीक पहले के काल पर अधिक ध्यान दूंगा। वर्ण व्यवस्था क्रमशः वैदिक काल में 1500 से 500 ईसा पूर्व विकसित हुई। यह प्राचीनतम युग है जिसके बारे में साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध हैं। सबसे पहले ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य अर्थात क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चार वर्णों के उद्भव का पौराणिक वर्णन मिलता है और वर्ण सोपान को जिस रूप में आज हम जानते हैं उसका प्रथम उल्लेख यही है। ब्राह्मण की स्थिति वैदिक काल के परवर्ती भाग में सुदृढ़ होने लगी और यह यज्ञ प्रथा के बढ़ते हुए महत्व और विस्तार से जुड़ी हुई थी। वैदिक काल के अंत तक ब्राह्मण की स्थिति अजेय हो चुकी थी और पूर्ववर्ती युग के उसके प्रतिद्वंदी क्षत्रिय का स्थान गौड़ हो गया था। घुरिये ने कहा है कि जैन और बौद्धों दोनों धर्मों को असाधारण योग्यता संपन्न क्षत्रियों ने शुरू किया था। उन्होंने एक नए दर्शन का उपदेश दिया जिसका उनके तात्कालिक अनुयायियों ने ब्राह्मणों से क्षत्रियों की सामाजिक श्रेष्ठता के बल देने के लिए उपयोग किया। ब्राह्मण को असंतोष का एक नया कारण मिला, वह वैदिक ब्राह्मण संस्कृत का मसीहा बनकर सामने आया। ऋग्वेद काल में जाति सोपान में वैश्य को निम्न स्थान प्राप्त था और वास्तव में वैदिक साहित्य में इस वर्ण का बहुत ही कम उल्लेख है। वैश्य शब्द बिल्कुल प्रारंभ में साधारण लोगों के लिए व्यवहार में आता था और वैश्यम का विचार है कि इस जाति का उदय ऋग्वेद में साधारण किसान जनजातियों से हुआ। वैश्यों द्वारा बौद्ध तथा जैन धर्म ग्रहण कर लेने से शायद उनकी स्थिति में सुधार हुआ। यद्यपि ब्राह्मण साहित्य ने वैश्य को तुच्छ स्थान और अल्प अधिकार दिए, किंतु काल की दृष्टि से कुछ शताब्दियों बाद और अपेक्षाकृत अधिक पूर्वी प्रदेशों में बौद्ध और जैन ग्रंथों से यह प्रकट है कि व्यवहार में सदा उनका दमन न होता था। इन ग्रंथों में बहुत से धनी व्यापारियों का उल्लेख है जो बड़ी विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और उनकी शक्तिशाली संगठित श्रेणियां थी। यहाँ आदर्श वैश्य तुच्छ करदाता पशु प्रजनक नहीं बल्कि 80 कोटि विभव अर्थात 80 लाख पर का स्वामी है। धनी वैश्य राजाओं द्वारा भी सम्मानित होते थे और उनकी कृपा तथा विश्वास प्राप्त करते थे। शताब्दियों के दौरान विशेष वर्णों के उदयास्त के अतिरिक्त वर्ण व्यवस्था में एक सीमा तक खुलापन था। यह क्षत्रियों के विषय में बहुत तीव्रता से दिखाई पड़ता है जो प्राचीन युगों में यवन, शक, पहलव आदि अनेक जाति समूहों से भर्ती किए गए जान पड़ते हैं। परिक्कर का यह कथन उद्धृत किया जा चुका है कि यह ऐतिहासिक काल में क्षत्रिय जैसी कोई जाति नहीं थी और ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से राजवंश विभिन्न जातियों से आते रहे हैं। वर्टनस्टीन के मत से मध्य युग सामाजिक गतिशीलता के विस्तृत और लगातार उदाहरणों से भरपूर है। स्टीन ने सिद्धांत और व्यवहार के बीच में अंतर पर जोर दिया है। जिस समय सिद्धांततः लोगों का पद कठोरता पूर्वक जन्म समूह की शुद्धता के अनुसार निर्धारित होता था, तब संभवतः भारत की राजनीतिक इकाइयों पर शासन प्रायः नीच कुलों के लोग ही करते थे। यह सामान्यतः स्थापना दक्षिण भारतीय योद्धाओं के बारे में तो सही है, पर उत्तर भारत के बहुत से राजपूत कुलों के बारे में भी उतनी ही सही हो सकती है। भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन दोनों ही समाजों में अपने वास्तविक शासकों को, जो प्रायः निम्न सामाजिक कुल के लोग होते थे, निर्दोष अथवा क्षत्रिय पद प्रदान कर सकने की क्षमता के अनुपम भारतीय सभ्यता के स्थायित्व और व दीर्घकालीनत्व का एक आधार मिल सकता है। अंग्रेज पूर्व भारत में सामाजिक गतिशीलता का एक शक्तिशाली स्रोत राजनीतिक व्यवस्था में की अस्थिरता में था। यह अस्थिरता भारत के किसी एक भाग तक सीमित न थी, बल्कि हर जगह व्यवस्था की विशेषता थी। वह सामाजिक गतिशीलता की एकमात्र तो नहीं पर एक महत्वपूर्ण राह अवश्य थी, किंतु राजसत्ता हथियाने के लिए यह आवश्यक था कि किसी जाति की अथवा उसकी स्थानीय प्रशाखा की सैनिक परंपरा को, संख्या मूलक शक्ति को और हो सके तो बहुत सी कृषि योग्य भूमि पर उसका स्वामित्व हो। एक बार राजसत्ता हथियार लेने के बाद उसके लिए अपने कर्मकांड और जीवन शैली का संस्कृतिकरण करना और क्षत्रिय होने का दावा करना आवश्यक था। उसे ऐसे ब्राह्मणों को आश्रय देना पड़ता था जो कर्मकांडी अवसरों पर उसकी पुरोहिताई करे और समूह के क्षत्रिय होने के दावे के समर्थन में उपयुक्त कल्प कथाएं प्रस्तुत करे। अंग्रेजी राज्य में कोई पारस्परिक युद्ध न होने देने की नीति के कारण राजनीतिक व्यवस्था स्थिर हो गई और गतिशीलता का यह मार्ग अवरुद्ध हो गया। अंततः अंग्रेजी शासन के कारण गतिशीलता के अन्य मार्ग खुले और इस बात से कोई हमें सरोकार नहीं। राजसत्ता की प्राप्ति द्वारा सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया के विषय में हमारी समझ पहले की अपेक्षा अब कहीं अधिक साफ है। इसका श्रेय बर्नार्ड कोहन और अरविंद शाह के अंग्रेज पूर्व भारत के उत्कृष्ट अध्ययन कार्य को है। कोहन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस क्षेत्र का अध्ययन किया और शाह ने मध्य गुजरात क्षेत्र का। कोहन ने भारत में 18वीं शताब्दी के राजनीतिक व्यवस्था के चार स्तर बताए हैं, सामाजिक, माध्यमिक, प्रादेशिक और स्थायी। सामाजिक स्तर पर मुगलों का अधिकार था और संपूर्ण उपमहाद्वीप पर शासन की निमित्त उन्हें वफादार सेना और अधिकारी तंत्र की आवश्यकता पड़ती थी। वैधता के चिन्हों पर उन्होंने ऐसा संपूर्ण एकाधिकार जमा रखा था कि 18वीं शताब्दी में वे समूह भी जो साम्राज्य नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे, अपनी सत्ता के वैधीकरण के बीच बची खुची साम्राज्य सत्ता का मुंह देखते थे। माध्यमिक स्तर अवध जैसे उन क्षेत्रों का था जिनका मुगल सत्ता के विघटन के बाद उदय हुआ था और किसी प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अथवा भाषाई प्रदेश पर अधिराजत्व था। प्रत्येक माध्यमिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई प्रादेशिक व्यवस्थाएं थी और इन प्रादेशिक व्यवस्थाओं पर ऐसे किसी व्यक्ति अथवा परिवार का आधिपत्य था जिसे सामाजिक अथवा माध्यमिक सत्ता द्वारा प्रदत्त पुश्तैनी अधिकारी अथवा शासक का दर्जा प्राप्त हो। ये प्रादेशिक व्यवस्थाओं के शासक राष्ट्रीय सत्ता के साथ राजभक्ति के अनुष्ठानों तथा वित्तीय दायित्व द्वारा शिथिल रूप में संबद्ध थे और उनकी संभाव्य प्रादेशिक नेताओं से स्पर्धा रहती थी। सत्ता के ढांचे में सबसे नीचे थी स्थानीय व्यवस्था जिसका प्रधान कोई कुल, कोई देशी मुखिया, कोई राजनीतिक नेता बनने वाला कर अधिकारी अथवा कोई सफल साहसिक व्यक्ति होता था। स्थानीय व्यवस्था के प्रधान प्रादेशिक नेता के अधीन होते थे, यद्यपि बहुत बार उन्हें अपना पद माध्यमिक सत्ता से मिला होता था। ये प्रधान ही स्थानीय किसानों, दस्तकारों और व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे और बाहरी हस्तक्षेप से उनकी रक्षा करते थे। इन सेवाओं के बदले में वे अपनी प्रजा से धन अथवा फसल में हिस्सा वसूल करते थे। बनारस क्षेत्र में अवध का नवाब नाम के लिए राजनीतिक सर्वाधिपति था और उसे यह अधिकार दिल्ली के मुगल सम्राट से मिला था। नवाब इस क्षेत्र पर शासन 1720 से 1740 तक अपने अधिकारियों द्वारा करता रहा और 1740 से 1775 ईस्वी तक अपने अंशतः स्वतंत्र अधीनस्थ बनारस के राजा द्वारा बदले में बनारस के राजा को बहुत से स्थानीय कुलों को, छोटे छोटे सरदारों को और अवध के नवाब या दिल्ली सम्राट से मिली राजस्व मुक्ति भूमि के स्वामी जागीरदारों को नियंत्रण में रखना पड़ा था। उनसे राजस्व या कर और अवसर पड़ने पर सैनिक सहायता वसूल करनी पड़ती थी। कुलों के भीतरी कलह विभिन्न कुलों के बीच कलाई अथवा कुलों और बनारस के राजा के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। अक्सर झगड़े सीधे बल प्रयोग द्वारा ही निपटाए जाते थे। इस सामाजिक और राजनीतिक स्तूप के तल में थी निम्न जातियां जो काश्तकार बटाईदार प्रजा या दास के रूप में भूमि जोतती थी। उनके ऊपर थे प्रभु जातियों के लोग राजपूत या भूमिहार ब्राह्मण जो निगमित कुलों में संगठित होकर भूमि पर नियंत्रण रखते थे। कुलों के संस्थापक या तो विजेता थे या शाही अथवा अन्य सनदों के प्राप्तिकर्ता। 18वीं शताब्दी समाप्त होते होते इन कुलों ने बड़े बड़े निगमित समुदायों का रूप ले लिया था जिनमें अक्सर 1000 से भी ऊपर संगोत्री परिवार होते थे। ये निगमित कुल भूमि की वास्तविक जोतने वाले से फसल का एक भाग वसूल करते थे जिसका एक अंश उन्हें उच्चतर राज सत्ता को देना पड़ता था। 18वीं शताब्दी समाप्त होते होते एक और स्वार्थ बीच में घुस आया। ये वे लोग थे जिन्होंने उच्चतर राज सत्ता यानी बनारस के राजा से फैसला किया कि वे हर वर्ष राजा के खजाने में कर के रूप में एक निश्चित रकम पहुंचा दिया करेंगे। बदले में वे कुलों से अथवा कुशेक स्थानीय मुखियों से और कभी कभी कुशेक सीधे काश्तकारों से परंपरा के आधार पर अथवा अपनी ताकत के जोर से जितना बनता उतना वसूल करते थे। कोहन ने किसी मनसाराम का हाल दिया है जो जौनपुर जिले के एक गांव में भूस्वामी तथा प्रभुता संपन्न भूमिहार ब्राह्मण जाति का था। वह पहले स्थानीय आमिल या कर वसूलने वाले के यहाँ नौकर था, फिर स्वयं आमिल बन बैठा। अपनी योग्यता और हर तरह की बेईमानी से उसने सफदर जंग से, जिसने अपने चाचा से अवध की नवाबी उत्तराधिकार में पाई थी, एक शाही सनद हासिल कर ली थी कि मनसाराम का लड़का बलवंत सिंह बनारस का राजा और बनारस जौनपुर और मिर्जापुर जिलों का जमींदार बना दिया गया। बनारस के राजा को अवध के नवाब को कर देना पड़ता था और जरूरत पड़ने पर उसके लिए सैनिक भी जुटाने पड़ते थे। राजा का दोहरा कर्तव्य था। उसके पास आवश्यक प्रशासनात्मक साधन न थे। स्थानीय मुखियों और कुलों की उपेक्षा करके सीधे लोगों के से राजस्व वसूल कर सके। वह अपने सैनिकों के लिए भी उन लोगों पर ही निर्भर था जिनके बिना वह अवध के नवाब से स्वतंत्र न हो सकता था। वास्तव में वह नवाब के कब्जे से निकलकर पूरी तरह स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास करता रहता था। साथ ही यह भी आवश्यक था कि वह अपने प्रदेश के भीतर सत्ताधारी स्थानीय मुखियों और कुलों पर भी अंकुश रख सके। इन मुखियों में जो सत्ताधारी स्थानीय ज्यादा शक्तिशाली होते थे उनसे स्वयं उसके अस्तित्व के लिए खतरा रहता था। कोहन ने 18वीं शताब्दी में बनारस क्षेत्र के राजनीतिक व्यवस्था को संतुलित विरोधी की व्यवस्था कहा है, जिसमें काश्तकार निगमित कुल कर वसूल करने वाले और राजा प्रत्येक की दूसरे के साथ स्पर्धा थी और प्रत्येक दूसरे पर निर्भर भी था। विभिन्न कुलों के बीच उनके तथा स्थानीय राजा या जागीरदारों के बीच और जागीरदारों तथा बनारस के राजा के बीच संघर्ष के फलस्वरूप प्रभु समूहों के मुखिया राज सत्ता प्राप्त करते थे और उसके द्वारा सोपान में उच्चतर स्थान प्राप्त करते थे। दूसरे शब्दों में राजनीतिक व्यवस्था से सामाजिक गतिशीलता को सहारा मिलता था। अरविंद शाह का 18वीं शताब्दी में गुजरात की अथवा कहें कि मध्य गुजरात की राजनीतिक व्यवस्था का विवरण भी उसकी अस्थिरता पर बल देता है। गुजरात के सबसे उर्वर क्षेत्र मध्यवर्ती मैदानों में ब्राह्मण बनिया राजपूत पाटीदार कोली आदि सवर्ण हिंदू रहते हैं। पाटीदार जो मूलतः कुनबी कहलाते थे परंपरा से किसान जाति हैं और कोली समूह एक जातीय समूहों में सबसे बड़ा है जिसमें गुजरात की हिंदू आबादी का 1/4 भाग आ जाता है। ग्यारहवीं और तेरहवीं शताब्दियों के बीच पाटल में सोलंकी राजा गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के सर्वाधिपति थे। उनके अधीन राजपूत राजा और सरदार छोटे छोटे इलाकों पर राज्य करते थे। राजपूतों में कुछ बहिर्गमन के कठोर नियमों के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में शासन करने वाले राजाओं के बीच सजातीयता के संबंध बन गए थे। गद्दी के उत्तराधिकार के बारे में ज्येष्ठता का नियम माना जाता था और छोटे लड़कों को राज्य के विभिन्न भागों में भूमि प्रदान करने की प्रथा थी। राजपूत राजाओं का शासन गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों पर भी था। इसका अर्थ था जनजाति व्यवस्था के ऊपर राजपूत राजनीतिक व्यवस्था का आरोप, जिसमें जनजाति के मुखिया दोनों के बीच कड़ी का काम करते थे। 13वीं शताब्दी के अंत में गुजरात में मुसलमानों की प्रधानता स्थापित होने पर मध्यवर्ती मैदानों में राजपूत राजाओं और सरदारों को हटाकर उस क्षेत्र को दिल्ली के सुल्तान के प्रभावी नियंत्रण में लाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। मुस्लिम शासन के पूरे काल में कोलियों का उल्लेख लुटेरे और डाकुओं के रूप में होता रहा और वे उन राजनीतिक साहसिक और अनियमित सेनाओं में शामिल हो गए थे जो शासकों के लिए निरंतर परेशानी का कारण बने रहे। कोहन की भांति शाह को भी 18वीं शताब्दी के गुजरात की एक स्तर तो साम्राज्यिक था, जिस पर 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मुगलों का और 1768 के बाद से पूना के पेशवाओं का अधिकार था। साम्राज्यिक स्तर के नीचे प्रादेशिक अथवा प्रांतीय स्तर था। यहाँ भी 1730 के आसपास मराठा शासक बड़ौदा के गायकवाड़ों ने मुगल राज्यपालों को हटाकर कब्जा कर लिया था। उससे भी निचले स्तर पर एक तो वह इलाका था जिस पर कर देने वाला राजा राजपूत, मुसलमान, कोली या पाटीदार शासन करते थे और दूसरे वह इलाका था जिस पर कमाविशदार नामक कर्मचारियों अथवा जागीरदारों के माध्यम से प्रादेशिक सत्ता का शासन था। प्रादेशिक व्यवस्था में सबसे नीचे का गांव था और वह किसी भी प्रकार से निष्क्रिय इकाई न था। विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता संबंधों की अविच्छिन्नता थी। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 और गुजरात में पेशवा सत्ता की स्थापना 1768 के बीच का युग कलह और अव्यवस्था का था। सत्ता के मुख्य प्रतिद्वंदी तीन थे: उच्च मुस्लिम अधिकारी जो स्वतंत्र रियासतें स्थापित करना चाहते थे, मराठों के कई परस्पर संघर्षरत गुट, और अंत में पर्वतीय गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के राजपूत सरदार। विभिन्न प्रतिद्वंदियों के बीच संबंध निरंतर बदलते रहते थे। मैदानी गुजरात के कुछ मुस्लिम अधिकारियों और सामंतों ने कैम्बे, बलसीनोर, पालनपुर और राधनपुर जैसी छोटी छोटी रियासतें बना ली। अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए वे एक मराठा गुट को दूसरे से लड़ाते रहते थे और जो भी उन्हें सबसे अधिक परेशान करता उसे कर दे देते थे। राजपूत आज भी यही करते थे। कुछ कोली मुखियाओं ने इस अवस्था का लाभ उठाकर अपनी अलग छोटी रियासतें बना ली, किंतु अधिकांश मैदानी गुजरात सीधा मराठा सत्ता के अधीन रहा। बुनियादी प्रशासकीय इकाई था परगना, जिसमें 40 से 70 तक गांव होते थे। वह साधारणतः एक कमाविशदार के अधीन होता था। दो परगने इसके अपवाद थे जो गायकवाड़ परिवार के दो जागीरदारों के अधीन थे। जागीरदार के गायकवाड़ के प्रति दो कर्तव्य निर्धारित थे: एक उसे वार्षिक कर देना और दूसरे जरूरत पड़ने पर सैनिक जुटाना। स्थानीय व्यवस्था में अपनी स्थिति और सेना रखने के अधिकार के कारण सदा यह संभावना रहती थी कि जागीरदार गायकवाड़ के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए यह संभावना भी रहती थी कि जागीर वापस छीन लिए जाएं अथवा बदलकर कोई दूसरी दे दी जाए। कमाविशदार एक सरकारी अधिकारी होता था जिसे गायकवाड़ निश्चित समय के लिए नियुक्त करता था। उसके जिम्मे एक और कभी कभी एक से अधिक परगना होता था। अपने प्रशासकीय कार्यों के लिए उसके पास कुछ सेना होती थी। उसके कार्यों में ये भी थे जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, कर वसूल करना, और यह प्रबंध करना कि उसके पड़ोस के मुस्लिम राजपूत और कोली राजा गड़बड़ न करें। गायकवाड़ राजा स्थानीय स्तर पर प्रशासन की देखभाल नहीं करते थे, क्योंकि न तो उनके लिए उसके पास अवकाश था न रुचि। प्रत्येक परगने का एक या अधिक पुश्तैनी मुखिया होता था, जिसे देसाई कहते थे। जब एक से अधिक देसाई होते तो परगने में शामिल गांवों को उनमें बांट दिया जाता। देसाई ब्राह्मण, बनिया अथवा पाटीदार जैसी किसी ऊंची जाति का स्थानीय व्यक्ति होता था। प्रत्येक देसाई के अपने अलग अलग मजूमदार, मेहता और रायवड़िया होते थे। गांव तीन तरह के थे, रास्ती यानी कानून का पालन करने वाले, मेवासी यानी बागी और रास्ती मेवासी यानी मिले जुले। मेवासी गांवों में राजपूतों या कोलियों की प्रधानता होती थी। मेवासी गांवों के राजपूत उन छोटे छोटे रजवाड़ों के वंशज थे, जिनकी अधिकांश भूमि मुस्लिम शासकों के हाथ पड़ चुकी थी और अब उनके पास एक दो गांव ही बचे थे। वे यह नहीं भूल पाते थे कि वे क्षत्रिय हैं और निरंतर अपनी स्वतंत्रता दिखाने का प्रयास करते रहते थे। कोली भी राजपूत कुलों के साथ विवाह संबंधों के कारण राजपूत होने का दावा करते थे। रास्ती मेवाती गांवों में कभी शांति रहती और कभी अव्यवस्था फैल जाती। मेवासी गांव आमतौर पर नदियों की गहरी खोहों अथवा मैदानों की सीमावर्ती जंगलों के समीप होते थे। उनमें से कुछ ने चारों ओर दुर्ग बना लिए थे। मुगल शासन के उत्कर्ष के दिनों में देहाती पुलिस चौकियों का जाल सा फैला रहता था, जो मेवासी गांवों में व्यवस्था बनाए रखता था, पर मुगल सत्ता के छीण होने के साथ वे उपद्रव करने लगे। कर वे बल प्रयोग की धमकी देने पर ही चुकाते और हर वर्ष कमावीदार या देसाई को अपनी सेना लेकर उसके पास जाना पड़ता था। मेवासी गांव सस्ती गांवों में राजमार्ग के यात्रियों से भी पैसा वसूल कर लेते थे। बहुत से रास्ती गांव उन्हें स्थायी रूप में कुछ भूमि देकर अथवा वासी नगद पैसा देकर शांति बनाए रखने का प्रयास करते थे। 18वीं शताब्दी में ही गुजरात के प्रसिद्ध किसान जाति पाटीदारों का भी उदय हुआ। मध्य गुजरात में कुछ ऐसे बहुत से रास्ती गांव थे जिन पर भूस्वामी कुनबी घरानों की प्रभुता थी। ये कुनबी घराने सम्मिलित रूप से कर देने के लिए जिम्मेदार थे, जो एक मुश्त निर्धारित कर दिया जाता था। प्रत्येक कुल कर का अपना हिस्सा गांव के मुखिया को दे देता था। कर देने वाले कुनबी ही पाटीदार कहलाते थे, जो एक प्रतिष्ठा मूलक नाम था। कालांतर में पाटीदार ही जाति का नाम हो गया और कुनबी नाम का चलन नहीं रहा। पाटीदार निर्यात के लिए नील, कपास और तंबाकू जैसी नकदी फसलें उगाते थे। मुगल शासन का अंत होने तक वे धनी हो गए थे और अपने धन के कारण गांव में दूसरों पर उनका दबदबा था। मुगलों के अंतर्गत राजपूतों के पराभव से भी पाटीदारों को बल मिला। पाटीदारों के राजनीतिक महत्व को मुगलों और मराठों दोनों ने ही स्वीकार किया है। लोकवार्ता में भी पाटीदार मुखियों और मुगल सम्राटों के बीच, जिनमें अकबर भी हैं, मित्रता का उल्लेख मिलता है। पाटीदार शास्त्रों का उपयोग भी करने लगे थे और उनमें से एक दो ने छोटी मोटी रियासतें स्थापित कर ली थी। इस सब के कारण पाटीदार क्षत्रिय वर्ण का दावा करने लगे और बहुत से राजसी रीति रिवाज और रंग ढंग अपनाने लगे। 18वीं शताब्दी में गुजरात तथा बनारस प्रदेश की परिस्थितियों का सारांश इन शब्दों में रखा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था भूमिहार ब्राह्मण, राजपूत, पाटीदार और कोली जैसे स्थानीय प्रभु समूहों के नेताओं की गतिशीलता के लिए अनुकूल थी। वह कुछ ऐसे अधिकारियों के लिए भी अनुकूल थी, उदाहरण के लिए बनारस के मनसाराम और गुजरात में मुस्लिम अधिकारी, जो अपनी सरकारी स्थिति के कारण रियासतें बनाने में सफल हुए। किंतु मुझे लगता है कि किसी न किसी समय उनकी वैयक्तिक गतिशीलता उनकी जातियों की गतिशीलता के साथ जुड़ गई। इस तथ्य ने 18वीं शताब्दी में मुगल शक्ति निरंतर घटती जा रही थी उस युग को गतिशीलता के लिए विशेष रूप से अनुकूल बना दिया, पर उसके और पूर्ववर्ती युग के बीच अंतर केवल मात्रा का था। अंग्रेज पूर्व भारत में आदिम औद्योगिकी और अपर्याप्त संचार व्यवस्था के कारण बड़े बड़े राज्यों के परिस्थिति क्षेत्रों में केंद्रीय सत्ता से पर्याप्त स्वायत्तता की सदा ही बहुत संभावना रहती थी। अब मैं संक्षेप में अपने तीसरे और अंतिम उदाहरण दक्षिण पश्चिम भारत में केरल पर विचार विमर्श करूंगा, जो गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों से सैकड़ों मील दूर है। पिछले वर्षों में केरल का अध्ययन दो अंग्रेज मानव वैज्ञानिक कैथलीन गफ और एरिक मिलर ने किया है, और इस क्षेत्र संबंधी अपनी चर्चा में मैं मुख्यतः उनके लेखन का ही सहारा लूंगा। मध्य केरल, भूतपूर्व कालीकट, वल्लवनाड, पालाघाट और कोचीन राज्यों के संयुक्त क्षेत्र के बारे में गफ ने लिखा है, पारंपरिक काल पड़ोसी राज्यों के बीच निरंतर युद्धों का काल था, जो केवल वर्षा ऋतु में ही थमा करते थे। किसी राजवंश की शक्ति इस बात पर निर्भर होती थी कि कितनी बारूद और मुद्रा, तट कर और आय पर उनका एकाधिकार है। समुद्री लड़ाई के लिए विदेशी तथा मुस्लिम राजाओं के उपयोग की उसमें कितनी क्षमता है और उपज तथा वेतन भोगी नायर सैनिकों के स्रोत के रूप में कितने राजक्षेत्र पर उसका नियंत्रण है। व्यापक युद्ध के समय अपनी श्रेष्ठ संपत्ति और सैनिक शक्ति के बल पर कोई भी राजवंश अपने राज्य में रजवाड़ों और अधीन सरदारों की सैनिक जुटाने के लिए बाध्य कर सकता था। प्रत्येक जिले में और प्रत्येक गांव का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया था कि वह युद्ध के लिए आमतौर पर कितने नायर सैनिक भर्ती किए जा सकते हैं। उत्तर केरल में, जिसमें दक्षिण कनारा का दक्षिणी भाग और मालाबार जिलों का उत्तरी भाग आता है, 16वीं शताब्दी के स्थानीय शासक अपने प्रभुता संबंधी आपसी झगड़ों में प्रतिद्वंदी विदेशी यूरोपीय अरबी शक्तियों की सहायता की तलाश में रहते थे। गफ का कहना है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के संघर्षों में कुछ नए नायर शासक यूरोपीय समर्थन के बल पर कुकुरमुत्तों की तरह तेजी से पैदा हो गए और थोड़े थोड़े गांवों के ऊपर उन्होंने अंशतः स्वायत्त शासन टिकाऊ मध्यवर्ती राज्यों की अपेक्षा उत्तर केरल में अधिक दिखाई पड़ती थी। एक उत्तर केरली कहावत है कि उच्च जाति नायर पकता है तो राजा हो जाता है। मिलर ने अपने निबंध मालाबार में जाति और इलाका में अंग्रेज पूर्व राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में उत्तरी केरल और दक्षिणी केरल के कुछ भागों में जाति और इलाके के संबंधों का विवेचन किया है। मलयाली समाज की बुनियादी इकाई सदा देमस अथवा गांव ही रही है, यद्यपि उसका महत्व अंग्रेज पूर्व काल में बात की अपेक्षा कहीं अधिक है। पारंपरिक देशम बहुत हद तक स्वतः समर्थ होता था और विभिन्न जातियों के पद का भूमि पर अधिकारों की भिन्नता से संबंध था। अंग्रेज पूर्व मालाबार समाज का रुझान सैनिकोचित था और व्यवस्था की प्रत्येक इकाई बस इस बात पर निर्धारित होती थी कि वह कितने सैनिक जुटा सकती है। गांवों को मिलाकर नाड या इलाके बनाए गए थे और नाड का अधिपति ही युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व करता था। यह इलाका न सिर्फ राजनीतिक इकाई होता था बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इकाई भी होता था। विभिन्न अधिपतियों में लड़ाई स्थानिक थी, यद्यपि इन इलाकों की सीमाएं अपेक्षा स्थिर थी। मलाबार का इतिहास अलग अलग अधिपति परिवारों के उत्थान पतन का इतिहास है। पड़ोस के अधिपति पराजित होने पर अधीन सामंत या मित्र बन जाते थे। पारंपरिक काल के पिछले 500 वर्षों में जिन तीन अधिपति परिवारों ने इस प्रकार विस्तृत प्रदेश प्राप्त किए, वे थे दक्षिण मालाबार के मध्य में वल्लुवनाड के राजा, कोचीन के महाराजा और कालीकट के जमोरिन। इस भांति सत्ता में के कई केंद्र थे। इन केंद्रों के समीपवर्ती नाड राज्यों में आत्मसात हो गए थे और उन पर सीधा शासन होता था। दूरवर्ती नाड सामंती क्षेत्र थे। परिधिष्ट इलाकों के अधिपति मित्रों के रूप में अधिकांशतः स्वायत्त थे और अपना समर्थन कभी उस राजा को देते रहते थे। इस भांति केरल की पूर्व अंग्रेज पूर्व राजनीतिक व्यवस्था बहुत अस्थिर थी और जैसा गफ ने जोर दिया है वह मध्यवर्ती तथा संभवतः दक्षिणी क्षेत्र की अपेक्षा उत्तर में अधिक अस्थिर थे। राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम स्वरूप विशेषकर प्रभु जातियों के लिए सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न होती थी। कुछ नायक नायर पक्कर सामंतन और क्षत्रिय हो गए थे। उदाहरण के लिए कालीकट वल्लुवनाड पालघाट और कोचिन के नायरों से उत्पन्न शाही मातृकुल कर्मकांडीय पद में अपने को अपनी नायर प्रजा से ऊंचा मानते थे। विभिन्न राज्यों में राजकुल उच्च पद के लिए आपस में झगड़ते थे और एक दूसरे से विवाह संबंध नहीं करते थे। इसलिए बहिर्गामी होने पर भी प्रत्येक राजकुल में अपने को अलग जाति समझता था। कोशीन के पेरुमलो का वंशज होने का दावा करता था और क्षत्रिय माना जाता था। वल्लुवनाड पालघाट और कालीकट कुल जो कभी पेरुमलो और अधीन सामंत थे ब्राह्मण सिद्धांत से ठीक क्षत्रिय नहीं माने जाते थे और उन्हें सामंतन कहा जाता था। दर्जे के लिए विवाद केवल राजकीय कुलों तक सीमित न था बल्कि निचले सामंती कुलों में भी होता रहता था। इनमें से भी प्रत्येक में अपने को अलग जाति मानने की ओर किसी को अपने से श्रेष्ठ न स्वीकार करने की प्रवृत्ति थी। इस बात पर जो अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अंग्रेज पूर्व की राजनीतिक व्यवस्था कुछ महत्वपूर्ण स्थिति वाले व्यक्तियों और समूहों की गतिशीलता के लिए अनुकूल थी। अब मैं संक्षेप में उस व्यवस्था में गतिशीलता की गौण आधार के क्षेत्र के राजा अथवा अन्य स्वीकृत राजनीतिक प्रधान की चर्चा करूंगा। राजा को अपने राज्य में बसने वाले जातियों का को उठाने या गिराने का अधिकार था। उदाहरण के लिए कोचीन के महाराजा को अपने राज्य में किसी भी जाति का पद उठाने का अधिकार था और किसी को भी जाति से सदा के लिए बहिष्कृत कर देने के लिए उसकी अनुमति आवश्यक थी। बल्कि यह कहा जाता था कि उसके कुछ शर्मों चेरुमनों को नायरों का पद दे दिया था क्योंकि उन्होंने उसके पारंपरिक शत्रु कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध उसकी तथा उसके मित्र पुर्तगालियों की सहायता की थी। जान पड़ता है कि वे अपने क्षेत्र में रहने वाली जातियों का पद उठाने का अधिकार दक्षिण भारत के कुछ बड़े जमींदारों को भी प्राप्त था। अंग्रेजों के काल में जब कर निर्धारण के लिए उनके वही खातों और खजानों कागजों की जांच की गई तो उनमें कुछ लोगों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार प्रदान करने के सिलसिले में रसीदें मौजूद थीं। जातियों का पद उठाने या गिराने का अधिकार इस बात से उत्पन्न हुआ था कि अंग्रेजों से पहले भारतीय राजा चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान जाति व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित माना जाता था। अंततः राज्य के भीतर जातियों के पदों को राजा की सहमति प्राप्त होती थी और किसी अपराध के लिए जाति से बहिष्कृत व्यक्ति सदा राजा के पुनरावेदन कर सकता था। राजा को अधिकार था कि वह फिर से सब प्रमाणों की जांच करे और निर्णय को मान ले या बदल ले। 19वीं शताब्दी के अंत में पुराने पंजाब में काम करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी एच ए मिनार्ड को एक बड़े प्रदेश के राजपूत राजा को जाति के मामलों में अपने अधिकार का उपयोग करते देखने का सौभाग्य मिला था। मिनार्ड ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि मुगल सम्राटों के जमाने में भी दिल्ली का न्यायालय सारी जाति के पंचायतों के ऊपर था और बड़े क्षेत्र में संबद्ध जाति के मामले में केवल दिल्ली में ही और तत्कालीन शासक के निर्देशन में ही तय किए जा सकते थे और कहीं नहीं। पद के बारे में झगड़े तय करने और किसी अपराध के लिए उपयुक्त दंड निर्धारित करने में राजा विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श लेता था पर वे केवल नियम को घोषित या निर्धारित करते थे। उस निर्णय को लागू राजा ही करता था। अभी तक मैंने केवल राजनीतिक व्यवस्था से उत्पन्न गतिशीलता पर ही विचार किया है और अंग्रेज पूर्व उत्पादन व्यवस्था से उत्पन्न गतिशीलता पर ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में मैं इस बात पर जोर देना जरूरी है कि अंग्रेजों से पहले भारत में आबादी की अधिकता की समस्या न थी। उदाहरण के लिए किंग्सले डेविस ने कहा है कि भारत की आबादी 1600 से 1800 के बीच स्थिर रही और 1800 में वह 12.5 करोड़ थी। देश के बहुत से भागों में ऐसी भूमि मौजूद थी जिसे थोड़े से प्रयत्न से खेती के योग्य बनाया जा सकता था। इसका अर्थ था कि काश्तकारों और खेतिहर मजदूरों को अपने भूस्वामी मालिकों के साथ संबंधों में एक सुविधा प्राप्त थी। अगर मालिक अत्यधिक अत्याचारी और निर्दयी हो तो काश्तकार अन्य क्षेत्र में जाकर नए खेत जोतने लगते अथवा अन्य मालिक के साथ काम करने लगते। मजदूरों और अन्य आश्रितों के भाग जाने का भय वास्तविक था और उससे मालिकों पर कुछ अंकुश रहता था। यहाँ इस ओर ध्यान दिलाना उपयोगी होगा कि सारी खेती के लिए, विशेषकर ऐसी खेती के लिए जिसमें सिंचाई जरूरी हो, कृषि चक्र के बुआई, रोपनी, निराई, कटाई और गहराई जैसे कामों में एक साथ और बहुत से मजदूरों की जरूरत पड़ती है। किसी परिवार के पास जितनी ज्यादा भूमि हो उतनी ही ज्यादा मजदूरों की जरूरत होगी और साधारण परिस्थितियों में भी वह सारा काम परिवार के लोगों से पूरा नहीं कर सकता। यह तो तब है जब यह मानकर चले कि परिवार के सभी लोग खेत पर काम करेंगे, पर इसकी संभावना बहुत कम है। खेत में मेहनत का काम करना कम हैसियत का चिन्ह माना जाता है और जितना बड़ा जमींदार हो वह निषेध उतना ही प्रबल होता है। इसके अतिरिक्त जाति के पद और कृषि सोपान के बीच थोड़े बहुत सामंजस्य का अर्थ है कि आमतौर पर भूस्वामी ऊंची जाति के हों और काश्तकार और विशेषकर भूमिहीन मजदूर नीची जाति के। इसलिए प्रतिष्ठा और जाति दोनों ही भूस्वामियों को अपने खेतों में काम करने से रोकती है और इस प्रकार मजदूरों की मांग बढ़ जाती है। मेरे कार्य क्षेत्र रामपुर गांव में, जहां खेतिहर मजदूरों की सुलभता की दृष्टि से परिस्थितियां कई प्रकार से अधिक अनुकूल थी, धनी से धनी और हैसियतदार परिवारों को भी आवश्यक मजदूरों को जुटाने में कठिनाई होती थी और इस कारण अपनी खेती में नुकसान से बचने के लिए उन्हें अपनी सारी शक्ति, जान पहचान और चतुराई का प्रयोग करना पड़ता था। यदि 1948 और 52 में रामपुर जैसे अपेक्षा अनुकूल परिस्थिति वाले क्षेत्र में धनी भूस्वामियों को पर्याप्त संख्या में मजदूर पाने में कठिनाई होती थी तो अंग्रेज पूर्व भारत में तो परिस्थिति कहीं अधिक खराब रही होगी। जब मजदूरों की कमी ही थी, यह बात सुविदित है कि इस शताब्दी के शुरू से खेतिहर मजदूरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस भांति जहां 1900 में कृषिजीवी जनसंख्या में से कुल 12% भूमिहीन मजदूर थे, वहां 1956 में कुल देहाती परिवारों में से 24% खेतिहर मजदूरों के हैं। बर्टन स्टीन के ये तर्क विश्वसनीय है कि खेती योग्य कम बसी हुई भूमि के, जिस पर नई बस्तियों बल्कि नए प्रादेशिक समाजों की स्थापना की गुंजाइश थी, सुलभ होने से स्थानीय योद्धाओं द्वारा अपने अधीन किसान गांव से अतिरिक्त उपज के रूप में वसूल किए जाने वाले कर की मात्रा तथा अन्य प्रकार की मनमानी पर कुछ रोक लगती थी। तमिल भाषी दक्षिण भारत के एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली काश्तकार जाति के विल्लाल की विभिन्न शाखाएं इसी प्रकार विकसित हुई जान पड़ती हैं। मध्ययुगीन दक्षिण भारत की भूमि व्यवस्था की इस शिथिलता पर इतिहासकारों का ध्यान गया है, पर उसका कोई विधिवत अध्ययन नहीं हुआ है। यदि ऐसी मुक्तता की विशेषता वाली विकासशील समाज व्यवस्था को मध्ययुग में दक्षिण भारत के बहुत से भागों की प्रतिनिधि व्यवस्था मान लिया जाए तो एक संकीर्ण स्थानीय पद व्यवस्था के भीतर उच्चतर पद के लिए मानव जाति इकाइयों की समकालीन प्रतिस्पर्धा का आदर्श पूर्ववर्ती युग में गतिशीलता की प्रक्रिया को समझने के लिए अनुपयुक्त जान पड़ता है। मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप के विषय में अधिकांश उपलब्ध साक्ष्य यह सूचित करता है कि पूर्ववर्ती काल में व्यक्तिगत गतिशीलता के लिए पर्याप्त अवसर था। इस प्रकार स्टीन के अनुसार मध्ययुग में सामाजिक गतिशीलता स्थान विषयक गतिशीलता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी और संभाव्य कृषि योग्य भूमि की सुलभता के साथ साथ बाढ़, सूखा, महामारी और अत्यधिक करों की मांग जैसे तत्व रूपांतरण के लिए बढ़ावा देते थे। स्थानांतरण में बाधाएं भी थी, पर वे ऐसी न थी कि उन्हें दूर न किया जा सके। स्टीन की कृषिरत बेल्लालों की शाखाओं के ओकलिग और मराठा जैसी किसान जातियों में बढ़ी है। बाहर चली जाने वाली प्रशाखा कुछ वर्ष बीतने पर अलग अंतर्गामी जाति हो जाती थी और जाति परंपरा के अनुरूप ऐसी प्रत्येक जाति दूसरों से श्रेष्ठ होने का दावा करती थी। यह संभव था कि एक शाखा अपना धंधा थोड़ा सा बदल ले या कोई नया रिवाज अपना ले या दूसरों की अपेक्षा अपनी जीवन शैली का कम या ज्यादा संस्कृतिकरण कर ले। अंग्रेजी राज के दिनों में और बाद में जो परिस्थितियां बनी उनके कारण ये जातियां मिलकर बड़ी बड़ी जातियां बनाने लगी। यह प्रक्रिया आज भी चालू है और एक जाति की विभिन्न प्रशाखाओं पर इसका प्रभाव अलग अलग होता है। मैं इसे क्षैतिज एकीकरण में वृद्धि कहता हूँ, पर इस प्रकार नई प्रकट होने वाली जाति में सम्मिलित जातियां वास्तव में समान नहीं होती थी। स्टीन का दूसरा कथन भी अंग्रेज पूर्व भारत में सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए एक संकीर्ण स्थानीय पद व्यवस्था के भीतर उच्चतर पद के लिए मानव जाति इकाइयों की समकालीन प्रतिस्पर्धा का आदर्श अनुपयुक्त है। महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक ही जाति की विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले प्रशाखाओं में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का कारण समझने में सहायक होता है। किसी एक परिवार या परिवारों के समूह को अपने मूल क्षेत्र की अपेक्षा जहां स्थानीय प्रभु जाति उसे जानती हो, ऐसे नए क्षेत्र में संस्कृतिकरण की हुई जीवन शैली अपनाने में अधिक स्वतंत्रता होगी जहां उसे कोई नहीं जानता। दूसरे शब्दों में स्थानांतरण के कारण उत्तीर्ण होना संभव हो जाता था और गतिशील समूह नए तथा प्रतिष्ठा सूचक सांस्कृतिक वस्त्र धारण कर सकता है, किंतु एक सीमित क्षेत्र में किसी राजनीतिक प्रधान की प्रभुता संपन्न जाति के अधिकार सीमाहीन नहीं हो सकते। फलस्वरूप निम्न जातियों को थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाती थी, किंतु इस कारण इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी स्थानीय पद व्यवस्था के भीतर वैसी गतिशीलता जैसी पोकाक ने बताई है अंग्रेजी राज्य का परिणाम है। स्टीन का विचार है कि मध्ययुगीन भारत में अकेले परिवार की गतिशीलता के लिए अवसर बहुत थे, साथ ही तब निगमीय गतिशीलता की आवश्यकता भी कम थी। छापे खाने जैसी सुविधाएं जो आधुनिक निगमीय गतिशीलता के लिए आवश्यक जान पड़ते हैं तथा उनकी राजनीतिक आवश्यकता अभी हाल में ही पैदा हुई। संभवतः स्टीन के निगमीय शब्द सामूहिक के अर्थ में व्यवहार किया है, और अगर मेरा एक ऐसा सोचना ठीक है तो वह यह निश्चित ही सही है कि सामूहिक गतिशीलता आधुनिक युग की विशेषता है, जबकि अकेले परिवार की गतिशीलता मध्य युग की विशेषता थी। पर अकेले परिवार की गतिशीलता को किसी स्थल पर आकर सामूहिक गतिशीलता का रूप लेना होता है और यह बाध्यता उनके लिए जाति पैदा करती है। गतिशील परिवार को अपने बेटों के लिए बहुएं और बेटियों के लिए वर कहाँ मिलेंगे। दक्षिण भारत में भी जहाँ ममेरे फुफेरे भाई बहनों और मामा भांजी के बीच विवाह अधिक पसंद किया जाता है, वर वधु मिलने के लिए कुछ परिवार तो आवश्यक ही होंगे। अनुलोम गमन भी छोटे समूहों को गतिशील बना सकता है, पर उस समूह का भी अकेले परिवार से कहीं अधिक बड़ा होना आवश्यक है।